Well, it's been a long week.
ये बहुत लंबा सप्ताह हो गया.
And I'm very tired.
और आप बहुत थक गए हैं.
But let's see if the Lord will help us one more time.
आइए देखें प्रभु हमारी सहायता करेगा एक और बार.
Today we're going to change the theme of the conference.
आज हम जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसका विषय बदलने जा रहे हैं.
And we're going to talk about something extremely important.
और अब हम कुछ और बेहद महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे आज.
As a matter of fact, if you do not get this right,
जो तथ्य है यदि आप उसको सही से नहीं प्राप्त करते हैं,
you cannot be a pastor.
आप एक पासवान नहीं हो सकते.
Or a missionary or anything else.
एक सेवक या कुछ और नहीं हो सकते आप.
If you neglect this duty, you cannot serve the Lord as an elder.
यदि आप यह कर्तव्य भूल जाएं तो आप एक प्राचीन के होने प्राचीन के समान सेवा नहीं कर सकते.
What am I talking about?
जिस बात पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है?
Your wife.
आपकी पत्नी.
And your children.
आपके बच्चे.
Now listen to me very carefully.
अब ध्यान से सुने.
If you are not purposely discipling your wife and children,
यदि आप उद्देश्य के साथ में अपनी पत्नी और बच्चों को शिष्य नहीं बना रहे हैं,
you are in sin.
आप पाप कर रहे हैं.
And I would not let you be a pastor in any church that I was a member of.
आप अपनी कलीसिया में आपको पासवान नहीं रहने देंगे जहां पर वो सदस्य होंगे.
Have I made myself clear?
क्या बात स्पष्ट है आपके सामने?
Are some of you in sin?
क्या आप में से कुछ लोग हैं जो पाप में हैं ये वाले?
Have you neglected your wife?
आपने अपनी पत्नी को अनदेखा किया?
Have you neglected your children?
आपने अपने बच्चों को अनदेखा किया शिष्य बनाने में?
Your primary ministry in this world.
आपकी जो मूलभूत सेवा है संसार में.
Is taking care of God's daughter.
परमेश्वर की पुत्री की सेवा करना. देखभाल करना.
After her, your second most important ministry is taking care of your children.
उसके बाद में आपकी दूसरी जो महत्वपूर्ण सेवा है वह अपने बच्चों की देखभाल करना.
If you have neglected them for the ministry,
यदि आपने सेवा के लिए उनको अनदेखा किया है,
you are wrong.
आप गलत हैं.
Very wrong.
बहुत गलत हैं.
Some of you probably are going to need to repent.
आप में से कुछ लोगों को निश्चय ही पश्चाताप करने की जरूरत है.
Some of you may have been taught.
हो सकता आप में से कुछ लोगों ने सीखा हो.
That you should sacrifice your family in the name of the ministry.
सेवा के नाम में आपको अपने परिवार का त्याग करना.
But 1 Timothy chapter 3 tells us.
पहला तिमोथियों 3 अध्याय में बताता है.
If you do not manage your own family,
यदि आप अपने परिवार का प्रबंधन नहीं कर सकते,
you cannot be a minister.
आप एक सेवक नहीं हैं, नहीं हो सकते हैं.
Now let's look at some things. Let's go to the book of Genesis.
आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक में चलें.
Chapter 2.
दो अध्याय.
Verse 23 and 24.
23 और 24 पद. मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए. उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 23 और 24 पद. और आदम ने कहा, या तो मेरी हड्डियों की में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, अतः यह नारी कहलाएगी क्योंकि यह नर में से निकाली गई है. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे.
The most important relationship that you have on this earth is your relationship with your wife.
इस संसार में इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जो रिश्ता आपके पास है वो है आपकी पत्नी के साथ में.
It is only with your wife that you are one flesh.
केवल आप अपनी पत्नी के साथ में एक तन होते हैं.
It is the foundational relationship in your family.
या जो आपके रिश्ते का है वो आधार है परिवार में. परिवार में आपके रिश्ते का आधार यही है.
If you neglect your wife, you are not a good father.
यदि आप अपनी पत्नी को अनदेखा करते हैं तो आप अच्छे पिता नहीं हैं.
She is number one.
उसका स्थान पहला स्थान है.
You are one flesh with her.
आप एक तन हैं उसके साथ में.
You are to even leave your father and mother in order to be joined to her.
पत्नी के साथ जुड़े रहने के लिए आपको अपने माता पिता को भी छोड़ना पड़ेगा.
Once you become a new family,
जब आप एक नया परिवार बनते हैं,
your wife is the number one person in your life.
आपके जीवन में आपकी पत्नी पहला व्यक्ति है.
More than your father and more than your mother.
आपके पिता और माता से बढ़कर.
And if you have to choose between father, mother and wife,
यदि आपको चुनाव करना हो आपके माता पिता और पत्नी के बीच में,
you choose your wife.
अपनी पत्नी का चुनाव करें.
You are for her.
आप उसके लिए हैं.
Now, let me give you an example.
अब एक उदाहरण देंगे आप.
If I'm in a boat,
अब अगर आप एक नाव में हो,
with my wife and my three children,
अपने पत्नी और तीन बच्चों के साथ में,
and I'm the only one who can swim,
आप ही एकमात्र हैं जो तैर सकते हैं,
and the boat begins to sink,
और नाव डूबने लगे,
and I can only save one person,
आप केवल एक जन को बचा सकते हैं तैर के अपने साथ,
biblically, who should I save?
बाइबल के अनुसार उनको किसको बचाना चाहिए?
I should save my wife.
अपनी पत्नी को बचाना चाहिए.
If I love my wife more than any person on this earth,
यदि मैं इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति से अधिक अपनी पत्नी को प्यार करता हूं,
then I'm going to have the happiest children on the face of the earth.
तो पृथ्वी पर सबसे प्रसन्न बच्चे होंगे मेरे.
Because they are going to know that their home is secure.
तब वो इस बात को जानेंगे कि उनका घर सुरक्षित है.
They are going to know that their father is going to stay.
तब उनको मालूम है कि उनके पिता जो हैं वो रुके रहेंगे. उनका पिता कहीं जाएगा नहीं.
Now let me talk to you for a moment. Some of you were thinking I would save my children.
एक क्षण आप बात करना चाहते हैं. आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने बच्चों को बचा लूंगा.
Especially some of the women here.
हो सकता कुछ महिलाएं.
Maybe you said, I'm not going to save that old husband of mine.
हो सकता हो कहें मैं अपने बूढ़े पति को नहीं बचाऊंगी.
I'm going to save my children.
मैं अपने बच्चों को बचाऊंगी.
Because there's no love like a mother's love.
क्योंकि माँ के प्रेम के समान कोई दूसरा प्रेम नहीं है.
Where did you learn that?
आपने क्या सीखा?
Did you learn that from the Bible?
क्या आपने वो बाइबल में से सीखा?
No, you did not.
नहीं, आपने बाइबल में से नहीं सीखा वो.
The Bible never says there's no love like a mother's love.
बाइबल ये नहीं कहती है कि माँ के प्रेम के समान दूसरा प्रेम नहीं है.
Do you know why so many women are attached to their children?
आपको मालूम है कई सारी महिलाएं बच्चों के साथ क्यों जुड़ी रहती हैं?
Now don't be angry with me.
नाराज ना हो आप.
So many women are attached to their children.
बहुत सारी महिलाएं बच्चों के साथ जुड़ी रहती हैं.
In the same way that a parasite attaches itself to an animal.
जिस प्रकार से
parasite.
अच्छा, जैसे वो परजीवी जानवरों को चिपके रहते हैं. जोंक, जोंक या उस तरह का. जी.
Is that right?
Yes.
Now, what do I mean by that?
उसका मतलब क्या है?
The woman is not receiving from her husband what she should be receiving.
महिला को जो कुछ उसके पति से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है.
She is not receiving the love and the emotional care that she needs.
उसको वह प्रेम और वह भावनात्मक देखभाल जो पति की ओर से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है.
She is not receiving from her husband the tenderness and nourishment that she needs.
पति की ओर से जो उसको देखभाल मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल रही. देखभाल और पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है.
And so she tries to get that from her children.
इसलिए वह प्रयास करती है वह बच्चों की तरफ से प्राप्त करने का.
Her children become the source of her love.
इसलिए बच्चे उसके प्रेम का स्रोत बन जाते हैं.
But children weren't made for that.
लेकिन बच्चे इसलिए नहीं बनाए गए हैं.
They weren't made to be the nourishment for their mother.
बच्चे इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि माता के पोषण का कारण हों.
Or their father.
या पिता के.
This is the reason.
यही कारण है.
When a a young boy grows up.
जब एक जवान लड़का बड़ा होता है.
He's 20 some years old.
वो 27 साल का हो जाता है.
And a beautiful young Christian girl comes into his life.
एक जवान मसीही लड़की उसके जीवन में आती है.
The mother hates her.
माँ उसको घृणा करती है.
The mother makes her life a living hell.
माँ उसके जीवन को जीवित नरक बना देती है.
Because the mother sees her as an adulteress.
क्योंकि माँ उसको एक व्यभिचारी के रूप में देखती है.
Someone that's going to steal her son from her.
कोई ऐसी व्यक्ति जो उसके बच्चे को चुरा लेगा उससे.
Her son that has been her support.
वो बेटा जो उसके लिए सहायक रहा है.
Because her husband has failed her.
क्योंकि पति उसका पति इस बात में असफल रहा.
Do you see, men?
क्या आप देख रहे हैं भाइयों?
That our sin has great effects.
ये पाप का बहुत बड़ा परिणाम है ये.
When you sin, it affects your entire family.
जब आप पाप करते हैं तो वह पूरे परिवार पर प्रभाव डालता है.
You can say what I do is my own business.
जब आप कह सकते हैं कि जब मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह मेरा कार्य है.
Your sin affects you.
आपका पाप आप को प्रभावित करता है.
It affects your wife and children.
आपका पाप आपके पत्नी और बच्चों को प्रभावित करता है.
It affects your church.
आपकी कलीसिया को प्रभावित करता है.
And all the families in your church.
आपकी कलीसिया के सभी परिवारों को प्रभावित करेगा वो.
Because you're giving them an ungodly example to follow.
क्योंकि आप उनको एक अभक्त उदाहरण दे रहे हैं अनुसरण करने के लिए.
It destroys society.
यह समाज को नष्ट कर देगा.
Do you see?
देख रहे हैं क्या हो रहा है.
Let me ask you a question.
एक प्रश्न पूछना चाहते हैं.
How much have you studied the doctrine of the family?
परिवार के सिद्धांत का कितना अधिक अध्ययन किया है आपने?
The way you manage your home, is it according to the Bible?
जिस तरह से आप अपने घर का प्रबंध करते हैं क्या वह बाइबल के अनुसार है?
Or is it according to culture?
क्या यह संस्कृति के अनुसार है?
How do you treat your wife?
अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं आप?
And your children?
अपने बच्चों के साथ.
Can you teach me what the scripture says?
क्या आप सिखा सकते हैं वचन क्या कहता है?
The church is very important.
कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है.
Because it's an institution of God.
क्योंकि यह परमेश्वर का संस्था है.
The family is an institution.
परिवार भी एक संस्था है.
The church must be governed by the word of God.
कलीसिया का संचालन परमेश्वर के वचन के द्वारा होना जरूरी है.
The family must be governed by the word of God.
परिवार का भी संचालन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है.
Not according to your culture or mine.
आपकी संस्कृति और मेरी संस्कृति के अनुसार नहीं.
But according to the Bible.
बाइबल के अनुसार.
Because your relationship with your wife.
क्योंकि आपका संबंध आपकी पत्नी के साथ में.
Is supposed to be a picture of Christ's relationship to his church.
यह इस बात की तस्वीर होना है जैसे मसीह का संबंध कलीसिया के साथ में.
You are to be a living sermon of how Christ loves his church unconditionally.
आप इस बात का जीवित संदेश हैं किस प्रकार से मसीह ने कलीसिया को बिना शर्त प्रेम किया.
Now let's look in Genesis chapter 1.
आइए हम उत्पत्ति उसका एक अध्याय देखें.
Verse 26
पद. फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करें.
Man was created to take dominion of the world.
मनुष्य इसलिए बनाया गया कि वो संसार पर अधिकार रखे.
But to take dominion in God's name.
लेकिन परमेश्वर के नाम में यह अधिकार होना है.
And according to God's will.
और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार.
To govern over the universe with wisdom.
पूरे संसार पर नियंत्रण करना बुद्धिमानी के साथ में.
And compassion.
और तरस के साथ में.
Respecting and caring for the things that God has made.
उन चीजों का सम्मान करते हुए जिनको परमेश्वर ने बनाया है.
This is the job of a man.
यह मनुष्य का कार्य है.
I mean a physical masculine man.
एक शारीरिक पुरुष का काम है.
We are called to go out and advance God's will in the world.
हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम आगे जाएं और परमेश्वर की इच्छा को संसार में पूर्ण करें.
Now how do we do that?
हम ये कैसे करेंगे?
Do we do it politically?
क्या हम इसको राजनीतिक रूप से करें?
No.
नहीं.
Do we do it militarily?
क्या हम इसको सैनिक के रूप से करें?
Absolutely not.
नहीं, निश्चय नहीं.
The sword was given to the government. It was not given to the church.
ये काम सरकार को दिया गया है, आपको नहीं.
How do we advance God's will on this planet?
इस पृथ्वी पर हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी को होते हुए देख सकते हैं?
By preaching the gospel.
सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा.
The great commission.
महान आज्ञा को पूरा करने के द्वारा.
Go into all the world.
सारे संसार में जाओ.
And preach the gospel.
सुसमाचार प्रचार करो.
What should we be like as men?
हम एक मनुष्य होने के नाते, एक पुरुष होने के नाते कैसे हों?
As heads of families.
परिवार का मुखिया होने के नाते.
What should be the attitude and purpose of our life?
हमारा व्यवहार कैसा हो और उद्देश्य क्या हो हमारे जीवन का?
The perfect man, Jesus Christ tells us.
सिद्ध पुरुष यीशु मसीह बताते हैं हमें.
Hallowed be your name.
तेरा नाम पवित्र माना जाए.
Your kingdom come, your will be done.
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो.
It doesn't matter whether we are a pastor.
इसका मतलब ये नहीं है चाहे हम पासवान हों,
or a missionary,
या सेवक हों,
or a carpenter,
या बढ़ई हों,
or a janitor,
या कोई दूसरा काम करने वाले हों.
When someone sees our lives as men,
जब कोई एक पुरुष के रूप में हमारे जीवन को देखता है,
they ought to see us dedicated and passionate to the advancement of God's kingdom.
तब लोग हमें परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित देखना चाहते हैं.
Now, let's look at this for a moment.
आइए हम इस पर एक क्षण के लिए ध्यान दें.
We know that a woman is called to submit to her husband.
हम जानते हैं एक महिला को इसलिए बुलाया गया है कि वह पति के प्रति समर्पित हो.
And we'll talk about what that means.
हम बात करेंगे उसका क्या अर्थ है.
And women must submit to their husbands even if their husbands are not worthy sometimes.
पत्नियों को तब भी अपने पति के लिए समर्पित होना चाहिए यद्यपि वह इस योग्य भी ना हो.
But men, we should be worthy.
लेकिन पुरुषों भाइयों हमको इसके योग्य बनना है.
Imagine how difficult it is for a daughter of God.
कल्पना करें इस बात की परमेश्वर की पुत्री के लिए कितना अधिक कठिन है ये.
Who wants to be obedient to God's commands,
जो परमेश्वर की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहती है.
And she wants to submit to her husband,
वो अपने पति की ओर समर्पित होना चाहती है.
But when she looks at her husband,
लेकिन जब वो पति की ओर देखती है,
she sees a self-centered man,
और वह उसको आत्मकेंद्रित व्यक्ति के रूप में देखती है.
Who is selfish,
जो स्वार्थी है.
And only cares about himself,
और वह केवल अपनी चिंता करता है.
It makes it very difficult for her,
या उसके लिए बहुत कठिन होता है.
It creates bitterness in her heart,
या उसके मन में कड़वाहट को उत्पन्न करता है.
How much easier is it for her,
कितना सरल होगा या उसके लिए,
if she looks at her husband,
कि वह अपने पति को देखे,
and she sees a man totally devoted to the kingdom of Christ.
और तब वो ऐसे व्यक्ति को देखे जो मसीह के राज्य के लिए पूरी रीति से समर्पित हो.
A man who does not think about himself.
ऐसा पुरुष जो अपने आप के बारे में नहीं सोचता है.
But he thinks about the will of God.
लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचता है.
And he thinks about loving as Christ loved.
और वो ऐसे प्रेम करने के बारे में सोचता है जैसे मसीह ने प्रेम किया.
And he thinks about sacrificing himself for the benefit of others.
और वह अपने आप को बलिदान करने के बारे में सोचता है दूसरों के लाभ के लिए.
He is compassionate.
वह तरस रखने वाला व्यक्ति है.
He is tender.
वह देखभाल करने वाला व्यक्ति है.
It is much easier for a woman to submit to a man like that.
ऐसी स्थिति में महिला के लिए उस पुरुष को समर्पित होना ज्यादा आसान होगा.
But now we have to be careful.
लेकिन अब हमें सावधान होना है.
Very careful.
बहुत सावधान होना है.
Because many times pastors and missionaries,
लेकिन क्योंकि कई बार पासवान लोग और सेवक
neglect their wives and their children,
अपनी पत्नी और बच्चों को अनदेखा करते हैं,
in the name of the ministry,
सेवा के नाम पर.
They do not disciple their wives,
वे अपनी पत्नियों को शिष्य नहीं बनाते हैं.
They do not spend time with them,
वे उनके साथ समय को नहीं व्यतीत करते हैं.
They do not nourish them,
वे उनके पोषण नहीं करते हैं.
They do not pray with their children,
वे अपने बच्चों के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं.
They do not play with their children,
वे अपने बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं.
They do not teach them the Bible,
वे उनको बाइबल नहीं सिखाते हैं.
Because they've got to do ministry all the time,
क्योंकि उनको पूरे समय सेवा करते रहना है.
Do you know what that demonstrates?
वो जानते हैं आप क्या प्रदर्शित करते हैं वो?
First of all, that you do not believe in the sovereignty of God.
पहली बात यह है कि आप परमेश्वर की सार्वभौमिकता पर विश्वास नहीं करते हैं.
You do not believe in the wisdom of God.
और आप परमेश्वर की बुद्धि पर विश्वास नहीं करते हैं.
And you are not listening to God.
और आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं.
Now in Romans chapter 12, verse 2.
आइए रोमियो 12 अध्याय 2 पद.
The Bible tells us that the word of God, the will of God is perfect.
वहां पर लिखा है परमेश्वर की इच्छा जो है वो सिद्ध है.
The will of God is perfect.
परमेश्वर की सिद्ध इच्छा.
Now what does that mean?
उसका क्या अर्थ है?
It means this.
उसका अर्थ यह है.
In order to fulfill the will of God in the ministry,
सेवा में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए,
you do not have to neglect the will of God for the family.
आपको अपने परिवार के लिए परमेश्वर की इच्छा को अनदेखा नहीं करना है.
God's will is perfect.
परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है.
You can't say to your wife,
आप अपनी पत्नी को नहीं कह सकते हैं,
I don't have time for you,
मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है,
because I have to do the will of God in the ministry,
क्योंकि मुझे सेवा में प्रभु की इच्छा को पूरी करना है.
Because what you're saying is this,
क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो ये है,
I can't obey God's will with regard to you and the children,
मैं तुम्हारे प्रति और बच्चों के प्रति परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता,
because I have to obey God with regard to the ministry,
क्योंकि मुझे सेवा के संबंध में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है.
Do you see how wrong that is?
आप समझ रहे हैं कितना गलत है ये?
Now, how does it work?
देखिए कैसे कार्य करता है.
I was a single missionary.
आप
was not married. I was a missionary who was not married.
जब उनका विवाह नहीं हुआ था.
For about 4 years.
Four years.
I did not have a wife.
आपके पास पत्नी नहीं थी.
I did not have children.
बच्चे नहीं थे.
So all the commandments of Scripture that talk about the responsibility of a husband and a father.
उस समय जब वो आज्ञाएं जो पति और बच्चे पति और पिता की जिम्मेदारी के बारे में बात करती हैं.
They had nothing to do with me.
उस समय इन आज्ञाओं का इनके लिए कुछ लेना देना नहीं था.
I didn't have to obey them.
उनको पालन करने की जरूरत नहीं थी.
I had no wife.
उनके पास पत्नी नहीं थी.
I had no children.
बच्चे नहीं थे.
All those commandments and responsibilities had nothing to do with me.
वे आज्ञाएं और जिम्मेदारियां इनके लिए कुछ मतलब नहीं रखती थी.
Because of that, I could work 18 hours a day in the ministry.
इसलिए सेवा में वे 18 घंटे कार्य कर सकते थे.
I had no other responsibility.
क्योंकि दूसरी जिम्मेदारियां नहीं थी उनके पास.
Do you see that?
देख रहे हैं आप इस बात को?
Ah, but then I got married.
लेकिन तब उनका विवाह होता है.
It was God's will for me to marry.
यह परमेश्वर की इच्छा है उनके लिए कि वो विवाह करें.
God brought me a wife.
परमेश्वर उनके लिए एक पत्नी को लेकर आया.
So many of the commandments of Scripture.
इसलिए वचन की बहुत सारी आज्ञाएं
that had nothing to do with me,
जिनका अभी तक इनसे कुछ लेना देना नहीं था,
I'm now responsible for.
अब वह उनके लिए जिम्मेदार बन गए.
Caring for the physical needs of my wife.
अपनी पत्नी की शारीरिक देखभाल के लिए.
Caring for the emotional needs of my wife.
उसकी भावनाओं की देखभाल करने के लिए.
Caring for the spiritual needs of my wife.
उसकी आत्मिक देखभाल करने के लिए.
According to Ephesians 5, I had to wash her in the word.
इफिसियों 5 अध्याय के अनुसार उनको वचन से धोना है उसको.
I had to pray for her.
उनको उसके लिए प्रार्थना करना है.
I had to nourish her.
उनको उसका पालन पोषण करना है.
I had to cherish her.
और उनको उसको प्रसन्न रखना है.
Do you see this?
आप देख रहे हैं?
That takes time, gentlemen.
इन सब के लिए समय चाहिए.
So I took time from the ministry and gave it to my wife.
इसलिए उन्होंने सेवा में से समय को लिया और अपनी पत्नी को दिया.
I still worked very hard in the ministry.
अभी भी सेवा में बहुत कठिन परिश्रम करते हैं आप.
And there were times that my wife had to make sacrifices just like me.
और कई बार ऐसे समय थे जब उनकी पत्नी को इनके समान त्याग करना पड़ा.
But I could not neglect the commandments.
लेकिन आप आज्ञाओं का अनदेखा नहीं करना चाहते थे.
So I was married.
इसलिए उन्होंने विवाह किया.
Just my wife and I.
सिर्फ दो लोगों ने.
And for 8 years we could not have children.
8 वर्षों तक उनके पास बच्चे नहीं थे.
My wife had a little brain tumor in her head.
उनके पत्नी के सर में ब्रेन ट्यूमर था.
We had no children.
उनके पास बच्चे नहीं थे.
So what does that mean?
उसका मतलब क्या है?
My wife and I were free from all the biblical responsibilities of parents.
अब माता पिता होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारी होती है बाइबल के अनुसार उन बातों से स्वतंत्र थे वो.
And so she and I were like a missionary team.
अब वो दोनों पति पत्नी मिलकर एक मिशनरी टीम बन गए, मिशनरी दल बन गए.
We worked together.
उन्होंने साथ मिलकर कार्य किया.
We traveled together.
साथ में यात्रा की.
We did everything together.
और सब कुछ साथ मिलकर किया आपने.
We could go into the jungle and preach.
और लोग जंगलों में जाकर प्रचार कर सकते थे.
We could climb up into the mountains and teach the Bible.
पहाड़ों पर जाकर लोगों को शिक्षा दे सकते थे.
We worked together all the time in the ministry.
उन्होंने साथ में मिलकर सेवा की बहुत समय.
But then 8 years later, God took away her tumor.
तब 8 वर्षों बाद परमेश्वर ने उनके कैंसर को ले लिया.
And we were given a child.
ट्यूमर को ले लिया और उनको एक बच्चा दिया.
And another child.
एक और बच्चा.
And another child.
एक और बच्चा.
And all the responsibility of parents became alive to us.
अब माता पिता होने के नाते सारी जिम्मेदारियां इनके लिए जीवंत बन गई.
So once again, our lives changed.
अब फिर उनका जीवन परिवर्तित हो गया.
There were new commandments to obey.
अब उनके पास नई आज्ञाएं थी पालन करने के लिए.
Now you can say to yourself, you're taking time from the ministry.
आप अपने आप से कह सकते हैं कि आप सेवा में से समय को ले रहे हैं.
Be very careful that ministry is not your idol.
सावधान रहें, सेवा आपकी मूर्ति ना बन जाए, आदर्श ना बन जाए आपके लिए, मूर्ति. मूर्ति न बन जाए आपके लिए.
Remember that above everything we are called to be obedient.
याद रखें इस बात को, सबसे ऊपर हम आज्ञाकारी होने के लिए बुलाए गए हैं.
So let's say God's given you a family.
आइए कहें कि परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है.
And you totally neglect them in order to preach the gospel.
और आप उसको पूरी रीति से अनदेखा करते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए.
And you stand before God on judgment day.
और न्याय के दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं.
Do you think he's going to applaud you? Do you think he's going to honor you?
क्या आप सोचते हैं परमेश्वर आपका सम्मान करेंगे?
No.
नहीं.
If you say, Lord, I worked in the ministry all the time.
यदि आप कहें प्रभु से कि प्रभु मैंने सेवा में पूरे समय कार्य करता रहा मैं सेवा के लिए.
This is what he's going to say.
परमेश्वर ये कहेंगे.
I did not command you to do that.
मैंने तुमको आज्ञा नहीं दी वो सब करने के लिए.
I gave you a wife.
मैंने तुम्हें एक पत्नी दी.
And with that wife, I gave you commands to obey.
और मैं पत्नी के साथ मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी उनका पालन करने के लिए.
You did not obey them.
तुमने उनका पालन नहीं किया.
I gave you children.
मैंने तुम्हें बच्चे दिए.
And with those children, I gave you commands to obey.
बच्चों के साथ में मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी उनका पालन करने के लिए.
You did not obey them.
और तुमने उनका पालन नहीं किया.
But Lord, it was because of my dedication.
तब आप कहेंगे प्रभु लेकिन ये मेरे समर्पण के कारण है.
He will say, no, it was because of your unbelief.
आप कहेंगे परमेश्वर कहेगा ये तुम्हारे समर्पण के कारण नहीं लेकिन तुम्हारे अविश्वास के कारण.
Did you think the kingdom depended upon you?
क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य आपके ऊपर निर्भर था?
I don't need you.
मुझे तो तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए.
And I did not need your ministry.
मुझे तुम्हारी सेवा भी नहीं चाहिए.
What I desired was for you to be obedient to me.
मुझे जिस बात की अभिलाषा है वो ये है कि तुम मेरे प्रति आज्ञाकारी बनो.
You see the difference, gentlemen?
अंतर समझ रहे हैं भाइयों?
You see how important this is?
समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है ये?
Now you have seen me here this week.
अब आपने भाई को पूरे हफ्ते यहाँ पर देखा है.
I am away from my wife and my children.
आप अपनी पत्नी और बच्चों से दूर हैं.
And I have worked hard this week.
और आपने इस सप्ताह कठिन परिश्रम किया.
And I will be away from my wife and children for another week while I'm in Nepal.
एक और सप्ताह आपके पत्नी और बच्चे आपका इंतजार करेंगे जब ये नेपाल में होंगे.
For the sake of the ministry, there are times I have to be away from my family.
सेवा के लिए कई बार ऐसे समय होते हैं जब आपको परिवार से दूर रहना होता है.
But that means that when I get home, I have to work twice as hard.
उसका अर्थ ये है कि जब वो वापस घर में जाते हैं तो उनको डबल परिश्रम करना है, दूना परिश्रम करना है अपने घर में.
Making up for the time that I've missed.
जो समय आपने खो दिया उसको फिर से उनके साथ उपयोग करें.
And when I am home for long periods of time,
जब आप लंबे समय तक घर में होते हैं,
I must be disciplined in my life to obey God.
अपने आपको अनुशासित करना है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए.
When I go to work in the morning,
जब आप सुबह कार्य करने के लिए जाते हैं,
I don't go there to have fun with everybody else at work.
सब लोगों के साथ में आप आनंद नहीं मनाते जिनके साथ कार्य करते हैं.
I go there to work.
आप वहां कार्य करने जाते हैं.
Why?
क्यों?
I need to get my work done.
क्योंकि आपको अपने कार्य को पूरा करना है.
So that I can get home.
ताकि आप घर में आ सकें.
And be with my family.
और अपने परिवार के साथ समय दे सकें.
If a bunch of guys come to me and say, "Hey, you want to go out and play soccer after work?"
यदि इनके पास कोई आया कि काम के बाद में आप हमारे साथ फुटबॉल खेलने चलेंगे?
I go no.
आप कहेंगे नहीं.
If I have any free time, I'm going home to my wife and family.
यदि मेरे पास थोड़ा भी समय होगा जो जिसमें जब कार्य नहीं है मेरे पास, तो मैं जाऊंगा मेरी पत्नी और बच्चों के साथ समय व्यतीत करूं.
We must be men who are totally dedicated to the kingdom.
हमें ऐसे लोग होना है जो पूरी रीति से परमेश्वर को के राज्य के लिए समर्पित हों.
But we minister in the kingdom according to the relationships God has given us.
लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य में इस प्रकार से सेवा करनी है उन संबंधों के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं.
And according to the priority of those relationships.
और उन संबंधों की प्राथमिकता के आधार पर हमें सेवा करनी है.
Let me give you an example.
हम आपको एक उदाहरण देंगे.
You have a small pool of water.
आपके पास एक छोटा पूल है, तालाब जैसा है पानी का.
And it's very calm.
बहुत शांत है वो.
And you take a pebble and you drop it in the middle.
आप उसमें कोई टुकड़ा ले लें और डालें.
What happens?
क्या होगा?
You see circles going out.
आप देखेंगे वहां पर गोले बन रहे हैं.
That's the way I look at my life.
आप अपने जीवन को वैसे ही देखते हैं.
I do the will of God according to circles going out from my life.
जितने अधिक वो गोले बढ़ते जाते हैं जैसे पानी में, वैसे ही जीवन में जैसे वो बढ़ते हैं वैसे कार्य करते हैं आप.
What is my first priority when I get up in the morning?
जब सुबह आप उठते हैं तो पहला प्राथमिकता क्या है आपकी?
To practice Christian disciplines.
मसीही अनुशासन का अभ्यास करना.
To read my Bible.
मेरी बाइबल को पढ़ना.
To pray.
प्रार्थना करना.
To memorize scripture.
परमेश्वर के वचन को याद करना.
To maybe read a good book.
कोई अच्छी किताब पढ़ना.
Why?
क्यों?
The greatest thing my wife needs from me.
सबसे महानतम चीज जिनकी पत्नी को इनसे चाहिए.
Is to be like Christ.
मसीह के समान होना.
The greatest thing my children need is for me to be a godly man.
महानतम जरूरत जो अपने बच्चों की हम पूरा कर सकते हैं वो है मसीह के समान होना.
The greatest thing the church needs is for me to be conformed to the image of Christ.
महानतम जरूरत जो अपने कलीसिया की पूरी कर सकते हैं वो ये कि हम मसीह के समान बन जाएं.
And the greatest thing the world needs is to see Christ in me.
महानतम चीज जो संसार हमसे चाहता है वो ये है कि हम मसीह के समान हमको देखे.
So in a sense my first priority is me.
इसलिए इस विचार के साथ पहली प्राथमिकता मेरी मुझे मेरे लिए है.
Preparing myself.
मुझे अपने आप को तैयार करना.
So that I can give myself away to everyone else.
इसलिए मैं बाहर के लोगों को सबको अपने आप को दे सकूं.
That's one thing you need to understand about authority.
इसलिए सबसे पहली बात हमें समझनी है जो अधिकार के बारे में.
If you have authority as a husband and a father.
यदि आपके पास अधिकार है पिता और पति होने का.
If you have authority as a pastor.
यदि आपको पास अधिकार है एक पासवान के समान.
You were given that authority to serve.
आपको वो अधिकार दिया गया है सेवा करने के लिए.
Not to reign like a king.
एक राजा के समान शासन करने के लिए नहीं.
Now, going out from me, what's my next priority?
अपने के बाद में उनका दूसरा प्राथमिकता क्या है?
My wife.
मेरी पत्नी.
Meeting with her.
उसके साथ मिलना.
Studying the scriptures.
वचन को पढ़ना.
Praying with her.
प्रार्थना करना.
And gentlemen, listen to me.
सज्जनों ध्यान दें.
One of the most important ministries with a wife.
पत्नी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है वो.
Listen to her.
उसको सुनना.
She wants to talk.
वो बात करना चाहती है.
And talk and talk and talk.
बात करना, बात करना, बात करना.
And we don't want to listen.
और हम लोग सुनना नहीं चाहते.
And then she becomes bitter in her heart.
तब वो अपने हृदय में कड़वाहट भर लेती है.
Because we'll go witnessing.
क्योंकि हम गवाही देने जाएंगे.
And we'll listen to a drunk for 3 hours.
हम एक शराबी की 3 घंटे तक सुनेंगे.
But we won't listen to our wife for 3 minutes.
और परंतु हम अपनी पत्नी के 3 मिनट तक भी नहीं सुन सकते.
That's wrong.
ये गलत है.
Now we'll talk more about our ministry to our wives later.
अपनी पत्नी के संबंध में सेवा के विषय में और अधिक बाद में बात करेंगे.
But after my wife, my ministry is my children.
परंतु मेरी पत्नी के बाद में मेरी सेवा है मेरे बच्चों के प्रति.
To disciple them.
उन्हें शिष्य बनाना.
To show them the love of God.
उनके साथ परमेश्वर का वचन परमेश्वर का प्रेम बांटना.
To discipline them.
उनको अनुशासित करना.
To play with them.
उनके साथ खेलना.
To teach them.
उनको सिखाना.
Then after them comes the church.
उन सब के बाद में कलीसिया आती है.
Because the Bible says, "Do good to all men, but especially those of the household of faith."
क्योंकि बाइबल कहती है सबके साथ भलाई करो विशेषकर विश्वासियों के साथ में.
There are some missionaries who care more about lost people than they do the lambs of God.
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खोए लोगों से अधिक नहीं कलीसिया के लोगों से परमेश्वर के लोगों से अधिक खोए हुए लोग चिंता करते हैं.
All they think about is evangelism.
सबसे अधिक जो बात वो सोचते हैं वह है सुसमाचार प्रचार.
But they don't think about feeding the sheep.
और क्योंकि वो भेड़ों के बारे में नहीं सोचते.
The sheep come first.
पहले भेड़े हैं.
And then evangelism.
तब सुसमाचार प्रचार.
The world.
संसार.
Do you see?
क्या आप समझ रहे हैं इस बात को?
Men.
भाइयों.
If you are called of God.
यदि आप परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं.
You are going to be very tired when you die.
आप बहुत थके हुए होंगे जब आप मरेंगे.
Because you have a lot of work to do.
क्योंकि आपके पास बहुत सारे कार्य होंगे करने के लिए.
And when you go to bed almost dead tired,
जब आप बिस्तर पर जाएंगे तो आप लगभग मृतक के समान थके हुए होंगे.
You get up in the morning and you start all over again.
और जब आप सुबह उठेंगे आपको फिर से वो सारे कार्य करने.
You were called to serve.
आप सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं.
Some of you young men,
आप में से कुछ जवान लोग
are probably thinking, I don't know if I want to be married.
मैं नहीं चाहता हूं कि मैं विवाह करना चाहता था.
Well, let me give you some advice.
लेकिन मुझे कुछ सलाह देने दें आपको.
Don't get married.
विवाह न करें.
Unless you're willing to sacrifice your life.
यदि आप अपने जीवन का बलिदान नहीं करना चाहते हैं तो विवाह न करें.
Because if you're not willing to do that,
लेकिन क्योंकि यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं,
you are going to do damage to a daughter of God.
आप परमेश्वर की बेटी के साथ में नुकसान करेंगे.
And God is going to do damage to you.
और परमेश्वर आपके साथ नुकसान करेगा.
He says he will not even listen to your prayers.
वो कहता है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनेगा.
First Peter chapter 3.
पहला पत्रस 3 अध्याय में ऐसा लिखा है. आपकी प्रार्थना में रुकावट बनेगी.
We have a statement in the United States.
अमेरिका में जो है उनके पास एक कथन है.
You cannot keep your cake and eat it too.
आप अपना केक नहीं रख सकते हैं उसको खाने के लिए. नहीं रख भी नहीं रख के ना, रखना और खाने का दोनों काम नहीं कर सकते हैं.
You have to make a decision.
आपको एक निर्णय लेना है.
Do you want to just look at your cake?
आप अपने केक को सिर्फ देखते रहें.
And have your cake?
और उसको रखे रहें.
Or do you want to eat it?
या आप उसको खाएं.
Because after you eat it, you're not going to have cake anymore.
क्योंकि जब आप उसको खा लेंगे तो आपके पास केक नहीं होगा.
We live in a society today.
हम ऐसे समाज में जीते हैं आज.
That thinks it can have everything.
वो सोचते हैं उनके पास सब कुछ होना चाहिए.
It cannot.
वो नहीं रख सकते हैं.
Let me give you an example, ladies.
बहनों के लिए अब एक उदाहरण है आपके पास.
In India, women are entering more and more into the workforce.
भारत में महिलाएं अधिक से अधिक कार्य के लिए जा रही हैं. कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं.
They're studying, they're getting jobs.
वह अध्ययन करती हैं, वह कार्य करती हैं.
They're making a lot of money.
वह बहुत सारा पैसा कमाती हैं.
They're working many hours.
वह बहुत घंटों काम करती हैं.
And they'll say this.
और वह लोग ये कहते हैं.
I want to have children too.
वह ये भी चाहती हैं कि हमें बच्चे चाहिए.
Here's a question.
यहाँ एक प्रश्न है.
Who's going to raise them?
उनको पालन पोषण कौन करेगा?
Now, if you want to go into a profession,
यदि आप किसी व्यवसाय में जाना चाहती हैं,
go into a profession,
व्यवसाय में जाएं,
but don't have children,
बच्चे ना उत्पन्न करें,
because who's going to raise them?
क्योंकि कौन उनकी देखभाल करेगा?
The government schools,
सरकारी स्कूल,
that's never going to teach them about Christ,
वह उनको मसीह के बारे में नहीं सिखाएंगे.
See, you have to make choices.
देखें आपको चुनाव करना है.
Men, we have to make choices.
भाइयों हमको चुनाव करना है.
There are times I cannot do certain things in the ministry.
कई बार ऐसे समय आएंगे जब आप सेवा के कुछ कार्यों को नहीं कर सकते हैं.
Because of the commandments of God regarding my family.
परमेश्वर की उस आज्ञा के कारण जो हमारे परिवार के संबंध में है.
We have to make choices.
हमें चुनाव करना है.
And we ought to choose to obey God.
इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन का चुनाव करना चाहिए.
Another thing, let me say just quickly.
एक और बात जल्दी से कहेंगे आप.
The Western world has come to believe.
पश्चिमी संसार इस बात में विश्वास करता है.
That being a father is not very significant.
कि पिता होना बहुत जरूरी नहीं है.
And especially the Western world has come to believe.
विशेषकर पश्चिमी समाज इस बात में विश्वास करता है.
That being a mother is not significant at all.
माता होना बहुत जरूरी नहीं है.
That if a woman now is just a mother and a wife, she's a failure.
उनका सोचना यह है कि एक माता, एक महिला यदि सिर्फ माता या पत्नी है तो ये असफलता है.
And that is one of the largest, greatest lies of the devil.
शैतान की यह सबसे बड़ी और महान झूठ है.
And now we have all our children being raised in public schools.
अब हम सबके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में पढ़कर बड़े हो गए हैं.
From the time they're just a few months old, they're turned over to someone else.
जब वो कुछ ही महीनों के थे तब कुछ किसी और पर छोड़ दिए गए.
And all the worldly, ungodly thinking is being pumped into their heads.
सारी संसारिक और अभक्तिपूर्ण चीजें उनके दिमाग में भर दी गई हैं.
And because of that,
इन सब चीजों के कारण,
instead of raising up children of God,
परमेश्वर की संतानें बनाने के स्थान पर,
we are raising up children of Caesar.
अच्छा, हम लोग कैसर की संतानें को बड़ा कर रहे हैं.
Instead of raising up children of God,
परमेश्वर की संतानों को बढ़ाने के बजाय,
we are raising up children of Caesar.
हम कैसर के ही संतानों को बड़ा कर रहे हैं.
That honor Caesar.
वह कैसर का आदर करते हैं.
That obey Caesar.
वह उसका आज्ञाओं का पालन करते हैं.
And will share the same fate as Caesar.
और वह उनका विश्वास भी उसी प्रकार से होता है. उनके जो मान्यता है वो उसी प्रकार से है कैसर के समान.
The same things are happening here in India.
इसी प्रकार की चीजें यहां भारत में हो रही हैं.
We must take our families seriously.
हमें अपने परिवार को गंभीरता से लेना है.
Pastor, you must know what the Bible teaches about family.
पासवानों, आपको जानना जरूरी है कि बाइबल परिवार के बारे में क्या सिखाती है.
And you must be able to live it out before the congregation.
आपको उसके समान जीना है कलीसिया के सामने.
And you must be able to teach it to the congregation.
और तब आपको कलीसिया को वो सिखाना है.
This is so important.
ये बहुत महत्वपूर्ण है.
Now, let's go to the book of Romans.
आइए रोमियो की पत्री में चलें हम लोग.
Romans chapter 8.
रोमियोस का 8 अध्याय.
Verse 28 and 29.
28 और 29 पद.
और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बनाए गए हैं, क्योंकि जिनके विषय में उसने पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, जिससे कि वह बहुत से भाइयों में
पहलौठा ठहरे. The Bible says that God is working for a great purpose in our lives.
बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक महान उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं.
What is that purpose?
वह उद्देश्य क्या है?
To conform us to the image of Christ.
मसीह के समान हमें मसीह के समान बनाने के लिए.
What is the purpose of marriage?
विवाह का उद्देश्य क्या है?
Primarily, it is to conform us to the image of Christ.
मूलभूत रूप से हमें मसीह के स्वरूप में बनाने के लिए.
That's what it's all about.
यही सबके विषय में है ये.
Now let me teach you something about the sovereignty of God.
आइए हम आपको परमेश्वर की कुछ सार्वभौमिकता के बारे में सिखाएं.
God gave me a good wife.
परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी पत्नी दी.
But he did not give me a perfect wife.
परंतु परमेश्वर ने मुझे एक सिद्ध पत्नी नहीं दी.
And he did not give her a perfect husband.
और उसको परमेश्वर ने एक सिद्ध पति नहीं दिया.
I had to say that in case my wife sees this film.
यदि इनकी पत्नी ये देखे तो इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं.
My wife is strong in all the ways that she must be strong.
इनकी पत्नी बहुत मजबूत है जिस स्थिति में उसको मजबूत होना चाहिए.
So that I am not tempted beyond what I can bear.
इसलिए आपके सामने परीक्षा के नहीं होती है कि वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं.
But God also orchestrated the weaknesses in my wife.
लेकिन तब भी परमेश्वर उनकी जो कमजोरियां हैं उनकी पत्नी की उनके लिए कार्य करते हैं.
He gave me a wife that was weak.
परमेश्वर ने एक पत्नी मुझे दी है जो कमजोर है.
In many of the areas where I most wanted her to be strong.
जिन क्षेत्रों में आप उसको अधिक चाहते थे कि वह मजबूत बने.
Now why did he do that?
आपने ये क्यों किया?
Is it because he hates me?
ये नहीं कि परमेश्वर उनसे झगड़ा करते थे.
No.
नहीं.
Here's why he did it.
परमेश्वर ने उसको इसलिए किया.
His plan for marriage is to make me like Christ.
परमेश्वर इनके विवाह के पीछे परमेश्वर की इच्छा ये है, हमारे विवाहों के पीछे परमेश्वर की इच्छा ये है कि हमें मसीह के समान बनाएं.
And he knows exactly what I need to be made like Christ.
और परमेश्वर जानते हैं मसीह के समान बनने के लिए मुझे क्या चाहिए.
Now what does it mean to be like Christ?
मसीह के समान बनने का मतलब क्या है?
When you think of Jesus, do you think of the wrath of God?
जब आप यीशु को देखते हैं तो क्या आप परमेश्वर के क्रोध के बारे में सोचते हैं?
You think primarily of unconditional love.
आप मूलभूत रूप से परमेश्वर के बिना शर्त वाले प्रेम के बारे में सोचते हैं.
Mercy and grace.
दया और अनुग्रह.
So if I'm to be like Jesus,
इसलिए यदि मुझे मसीह के समान बनना है,
the greatest characteristic in my life has to be unconditional love.
मेरे जीवन में जो महानतम चरित्र होना है वो ये है कि बिना शर्त का प्रेम.
How can I learn to practice unconditional love?
कैसे मैं सीख सकता हूँ बिना शर्त के प्रेम का अभ्यास करना?
If I am married to a woman,
यदि मैं ऐसी महिला से विवाह किया करता,
who meets all the conditions,
जिसकी सारी जिसमें सारी शर्तें पूरी होती.
How can I learn to practice mercy if I am married to a woman who never fails?
यदि मैं ऐसी पत्नी से विवाह करता, ऐसी महिला से विवाह करता जो कभी असफल नहीं होती है, तो मुझे दया सीखने की क्या जरूरत थी?
Sometimes maybe you look at your wife,
कई बार अपनी पत्नी को देखते होंगे,
and you see where she is weak,
और आप देखते हैं कि वो किन बातों में कमजोर है,
and where it causes you trouble,
और यह आपके लिए समस्या का कारण होता है.
And you may think to yourself, I made a mistake when I married her.
और आप अपने बारे में सोचते हैं कि अरे मैंने गलती कर दी उससे विवाह करके.
Well, you may be made a mistake.
हो सकता है आपने गलती की हो.
But God didn't.
लेकिन परमेश्वर गलती नहीं करता.
God knew exactly the woman you needed to marry.
परमेश्वर जानते हैं कि आपको किस महिला से विवाह करने की जरूरत थी.
So that he could change certain things in your life.
ताकि वह आपके जीवन में कुछ परिवर्तन कर सके.
That must be changed.
और वो परिवर्तन होना जरूरी है.
And this is the only way.
यही एकमात्र तरीका है.
Sometimes a pastor or a missionary will marry a woman who's kind of difficult.
कई बार कुछ पासवान या सेवक ऐसे महिला से विवाह करते हैं जिसके साथ रहना कठिन होता है.
He may even think that she is hindering his ministry.
वह कई बार ऐसा सोचेंगे कि वह उनकी सेवा में रुकावट बन रही है.
And she may be hindering his ministry.
हो सकता है वह सेवा में रुकावट बन रही हो.
But it's because there's something more important than ministry.
लेकिन यह इस कारण है कि वहां पर कुछ ऐसा भी है जो सेवा से बढ़कर है.
It's your conformity to the image of Christ.
वह यह है कि आपका मसीह के स्वभाव में बनना.
Now, I could be saying the same thing about men with regard to women and women with regard to men.
इन बातों को महिलाओं के साथ जो पुरुष के संबंध में, पुरुष के साथ महिलाओं के संबंध में कह सकते हैं.
This applies to all of us.
यह हम सब पर लागू होता है.
Women have to suffer with weak husbands.
महिलाओं को कमजोर पुरुषों के साथ में, पतियों के साथ में कष्ट उठाना होता है.
But it's the same purpose.
लेकिन इन दोनों बातों के पीछे वही उद्देश्य है.
To conform them to the image of Christ.
उनको मसीह की समान बनाने में.
Now the world can't understand this.
संसार इन बातों को नहीं समझ सकता.
Because they only live for this world.
क्योंकि वो लोग केवल इस संसार के लिए जीते हैं.
And so if they marry somebody,
इसलिए यदि वह किसी के साथ विवाह करते हैं,
and that person turns out to be difficult,
और वह व्यक्ति उनको लगता है कि कठिन है,
they say to themselves,
वह अपने आप से कहते हैं,
I've only got one life.
मेरे पास केवल एक जीवन है.
I'm not going to waste my life with this woman.
मैं इस महिला के साथ अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूंगा.
I'm going to go find another one.
मैं दूसरे को ढूंढ लूंगा.
But see, the Christian doesn't think that way.
लेकिन मसीही लोग इस प्रकार से नहीं सोचते.
He's not living for this world.
वह लोग इस संसार के लिए जीवन को नहीं व्यतीत कर रहे हैं.
He's living for the next.
वह लोग दूसरे संसार के लिए जी रहे हैं.
And he knows that these difficulties,
वह जानते हैं इन कठिनाइयों को,
are conforming him to the image of Christ.
ये कठिनाइयां उनको मसीह के समान बना रही हैं.
And are going to result in greater glory.
और इनका जो परिणाम होगा वो महान महिमा होगी.
Now, let's just look at something for a moment.
आइए एक क्षण के लिए कुछ और बात करें.
What if God had given you a perfect woman?
आप क्या सोचते हैं यदि परमेश्वर आपको एक सिद्ध महिला देते?
I mean perfect.
एकदम सिद्ध.
I'll tell you what would happen.
क्या होता बताएंगे आपको.
You would probably look like a perfect husband.
और आप सिद्ध पति के समान दिखते.
But it would all be fake.
लेकिन यह सब झूठ है, झूठ होता.
You would act like a perfect husband.
आप एक सिद्ध पति के समान आचरण करते.
Because you would be married to a wife who does absolutely everything you want.
क्योंकि आपने ऐसी महिला से विवाह किया है जो कुछ आप चाहते हैं वही कर रही है वो.
Outside you would look perfect.
बाहर से आप सिद्ध दिखते.
Loving and kind.
प्रेमी और दयालु.
But inside you would be like a tomb full of dead men's bones.
और लेकिन अंदर से आप उस सड़ी गली हड्डियों वाली कब्र के समान दिखते.
When we are in a relationship that's difficult,
जब हम संबंधों में हैं तो ये कठिन है.
It brings out who we really are.
और ये प्रदर्शित करता है कि हम वास्तव में कौन हैं.
When you talk to another pastor,
जब आप दूसरे पास्टरों से बात करते हैं,
or even someone in your congregation,
या हो सकता है आपकी मंडली में किसी से,
they don't see who you really are.
आप वो लोग नहीं देखते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं.
But your wife sees who you really are.
लेकिन आपकी पत्नी देखती है कि आप वास्तव में कौन हैं.
You act around her in a way you would not act around anyone else.
जितना अधिक आप अपनी पत्नी के आसपास कार्य करते हैं, उतना अधिक दूसरे लोग नहीं लोगों के पास नहीं करते हैं.
Your sin becomes evident around her.
आपका पाप उसके सामने सबूत बन जाता है.
It's like one brother who came to me and said this.
यह इस प्रकार से एक भाई इनके पास आया और उसने कहा,
I'm so ashamed.
मैं बहुत दुखी हूँ.
I say things to my wife.
मैं बातों को अपनी पत्नी से कहता हूँ.
That I would never say to any other believer.
जो मैं किसी दूसरे विश्वासी से नहीं कहता.
It's because she's your wife.
क्योंकि वह तुम्हारी पत्नी है.
No one sees.
कोई इस बात को नहीं देखता.
God sees.
परमेश्वर देखते हैं.
Now let me say something to the young men here.
आइए जवानों से कुछ बात करें.
Young men will sometimes come into my office.
जवान लोग कई बार आपके ऑफिस में आते हैं.
And they'll say, I'm in love.
वह कहते हैं मैं प्रेम में पड़ गया.
And I want to get married.
और मैं विवाह करना चाहता हूँ.
And they tell me who the girl is.
और तब बताते हैं कि वो लड़की कौन है.
And I say, why do you want to marry her?
तो आप पूछते हैं उनसे कि क्यों उस लड़की से विवाह करना चाहते हैं आप?
And they say, well, she's beautiful.
तो वो कहते हैं बहुत सुंदर है वो.
And I love being with her.
मैं उसके साथ प्रेम महसूस कर रहा हूँ.
And when we are together, I feel great.
और जब हम साथ में होते हैं तो मैं महान महसूस करता हूँ.
And we can talk.
और हम बात कर सकते हैं.
And we have a wonderful time together.
और हम साथ में अच्छा समय व्यतीत करते हैं.
So when he finishes,
जब वो समाप्त करते हैं,
I say this to him.
आप कहते हैं उनसे,
Let me see if I understand what you're saying.
मुझे देखने दे कि मैं तुम्हारी बात समझ पाया या नहीं.
You want to marry this girl?
आप इस लड़की से विवाह करना चाहते हैं?
Because she meets all your self-centered, selfish desires.
क्योंकि वह तुम्हारी सारी स्वार्थपूर्ण अभिलाषाओं को पूरा करती है.
And he says, that's not what I mean.
वो कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था.
And I say, but that is what you just told me.
लेकिन आपने वही बताया मुझे.
You want to marry her because she's beautiful.
आप तुम इसलिए उससे विवाह करना चाहते हो क्योंकि वो सुंदर है.
What's going to happen when she's not beautiful anymore?
यदि वो और अधिक अब बहुत दिन तक सुंदर ना रहती तो क्या होगा?
What's going to happen when some woman comes by who's more beautiful?
यदि उससे सुंदर कोई लड़की आपको मिल जाए तब क्या होगा?
You want to marry her because you feel great when you're with her.
तुम उससे इसलिए विवाह करना चाहते हो क्योंकि तुम अच्छा महसूस करते हो जब उसके साथ होते हो.
What are you going to do when you don't feel great being with her?
यदि अच्छा ना महसूस करो उसके साथ होना तब क्या होगा?
What are you going to do when you see someone else with whom you do feel great?
और हो सकता कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ तुम और अच्छा महसूस करो तब क्या होगा?
Now what is marriage?
अब विवाह क्या है?
It is many wonderful things.
ये बहुत अद्भुत चीजें हैं.
But above all those,
उन सब के ऊपर,
it's a calling.
यह एक बुलाहट है.
I cannot stop preaching.
मैं प्रचार करना बंद नहीं कर सकता.
There's a calling on my life.
यह मेरे जीवन की बुलाहट है.
I would even think if I stopped preaching, I might die.
वो ऐसा सोचते हैं कि यदि प्रचार करना बंद कर दे तो मर जाएंगे.
It's what God has told me to do.
वही है जो परमेश्वर ने इनको करने के लिए बुलाया है.
Doesn't matter what I feel.
इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं.
Doesn't matter if it's easy or difficult.
इससे कोई मतलब नहीं है कि कठिन है या सरल है.
Doesn't matter if it bears fruit.
इससे कोई मतलब नहीं कि वो फल ला रहा है.
I'm called to preach.
मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया गया है.
In the same way.
इसी प्रकार से.
God called me.
परमेश्वर ने मुझे बुलाया.
With an irrevocable calling.
एक विशेष बुलाहट से.
To lay down my life,
मेरे जीवन को देने के लिए,
in marriage,
विवाह में,
to his daughter,
उसकी पुत्री को.
It doesn't matter what I feel.
इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कैसे महसूस करता हूँ.
It doesn't matter how it works out.
इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कैसे कार्य करता हूँ.
I am called to lay down my life for this woman.
मैं इसलिए बुलाया गया हूँ कि मेरा जीवन इस महिला के लिए दूँ.
And to lead her in the things of God.
और उसका उसकी अगुवाई करूं परमेश्वर की बातों में.
And to be a blessing to her.
और उसके लिए मैं आशीष का कारण बनूं.
Now that's not all that marriage is.
यही सब कुछ विवाह यही सब कुछ नहीं है.
There can and should be romance.
वहां पर हो सकता है कि रोमांस हो.
Joy.
आनंद.
Intimacy.
घनिष्ठता.
Friendship.
मित्रता.
It should all be there.
हो सकता है सब हो.
But that's not the foundation of it.
लेकिन ये सब विवाह का आधार नहीं है.
The foundation of it is God's calling.
लेकिन जो आधार है विवाह का वो परमेश्वर की बुलाहट है.
Let's say that a godly man marries a very physically beautiful woman.
आइए हम कहें कि परमेश्वर का भक्त जन कोई भक्त मनुष्य किसी सारे रूप से बहुत सुंदर महिला से विवाह करता है.
And he loves her because of her beauty.
और वह इसलिए उससे प्रेम करता है क्योंकि वह सुंदर है.
But then she's in a terrible accident.
और तब कोई दुर्घटना हो जाती है.
And her beauty is destroyed.
और उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है.
What is the godly man's response?
अब परमेश्वर जो भक्त मनुष्य है उसका क्या जिम्मेदारी है?
Does he love her less because she's not as beautiful?
क्या उसका प्रेम समाप्त हो जाता है क्योंकि अब वह सुंदर नहीं है?
No, he loves her more.
अब वह और अधिक प्यार करता है उससे.
Why?
क्यों?
Because she needs more love.
क्योंकि उसको बहुत प्रेम की जरूरत है.
Do you see that?
समझ रहे हैं आप?
How many of you men have a daughter?
आप में से कितने लोगों के पास पुत्रियां हैं?
Raise your hand. Okay. I am a Christian.
मैं एक मसीही हूं.
And I have a daughter.
मेरे पास एक पुत्री है.
And I am not a violent man.
Violent.
I am not a fighting violent
man. आप बहुत झगड़ा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं.
I'm a Christian.
आप एक मसीही हैं.
I'm to turn the other cheek.
आप दूसरों को आप दूसरा गाल फेरने वाले व्यक्ति हैं.
I'm to bless those who curse me.
आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों को आशीष देते हैं, जो साथ देते हैं.
And I hopefully will do that.
और आप उम्मीद करते हैं कि यही आप भी करेंगे.
But if you touch my daughter,
लेकिन यदि आप मेरी बेटी को छुए हैं,
things are going to change.
स्थितियां बदल जाएंगी.
You are going to think the devil himself jumped on your back.
आप सोचेंगे कि शैतान खुद आपके ऊपर कूद पड़ा.
Don't touch my daughter.
मेरी बेटी को ना छुए.
I will hurt you.
अब मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा.
I will do anything to stop you.
अब मैं कुछ भी करूंगा आपको रोकने के लिए.
Now, I'm just using that illustration.
यह सिर्फ एक उदाहरण है.
To say this.
यह कहने के लिए.
If I, being evil, can love my daughter that much.
यदि मैं बुरा बन सकता हूं अपनी बेटी को इतना प्यार करता हूं मैं.
How much does God love His daughter?
परमेश्वर कितना अधिक प्यार करते हैं अपनी बेटी पुत्री से.
If you're a husband,
यदि आप एक पति हैं,
you should be afraid.
आपको डरना चाहिए.
You should fear God.
आपको परमेश्वर का भय मानना चाहिए.
To fail in the ministry,
सेवा में असफलता,
is not near as bad as failing with His daughter.
सेवा में असफलता इतना अधिक बुरा नहीं है जितना अधिक परमेश्वर की पुत्री के साथ असफलता.
It's His daughter.
ये परमेश्वर की पुत्री है.
It's His daughter is more important than your ministry.
परमेश्वर की पुत्री अधिक महत्वपूर्ण है आपकी सेवा से.
I know that comes as a shock to you.
मैं जानता हूं कि कई लोगों के लिए ये झटका लगने जैसी स्थिति होगी.
But His daughter is more important than your ministry.
लेकिन आपकी सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर की बेटी.
I was in Romania several years ago.
कई वर्षों पूर्व आप रोमानिया में थे.
And I was speaking to all the missionaries that we support there.
और आप उन सेवकों से बात कर रहे थे जिनकी सहायता करते हैं.
And I discovered that all of them were believing a false teaching.
और आपने पाया कि उनमें से कई लोग हैं जो झूठी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं.
They had been taught.
और उनको सिखाया गया था.
That they should neglect their wives and children.
उनको सिखाया गया था कि उनको अपनी पत्नी और बच्चों को अनदेखा करना है.
And work all the time in the ministry.
और पूरे समय सेवा करनी है.
Well, we changed that really quick.
और आपने बहुत जल्दी इन बातों को बदला.
But this is what I told them.
लेकिन आपने क्या सिखाया उनको?
I said, I am the international director of Heart Cry.
आपने बताया कि मैं अंतरराष्ट्रीय निदेशक हूं हार्ट क्राई सेवा का.
Whatever that means.
उसका जो भी मतलब हो.
If I travel from the United States to Romania,
यदि मैं अमेरिका से रोमानिया आता हूँ यात्रा करके,
and I walk up to your house,
और मैं आपके घर में आता हूँ,
and you're walking out of the house with your wife and children,
आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर जा रहे हैं,
because you promised to take them to the park,
क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है उनको पार्क में ले जाने की,
and I tell you,
मैं आपको बताता हूँ.
I have traveled all the way from the United States.
मैं इतनी लंबी यात्रा करके आया हूँ अमेरिका से.
And I need to meet with you.
और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ.
If you tell me.
यदि आप मुझे बताएं.
Okay, brother Paul.
ठीक है भाई पॉल.
And you tell your wife and children.
आप अपने बच्चों को बताएं.
I can't take you to the park today.
मैं तुम्हें आज पार्क में नहीं ले जा सकता.
Then you're fired. You're no longer a missionary.
आप सेवक नहीं रहेंगे.
We're going to dismiss you.
आपको निकाल दिया जाएगा.
Now, that is an exaggeration. That is an exaggeration.
ये बहुत अधिक, हाँ, बहुत अधिक तारीफ करना नहीं अपने आप की, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना नहीं है.
But there's a purpose to it.
लेकिन इसके पीछे उद्देश्य है.
There are times in the ministry.
सेवा में कई बार ऐसा होता है.
And there where there will be great interruptions.
जब बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है.
We all know that.
हम सब जानते हैं.
And there are times we have to tell our wives and our children we simply cannot.
जब हमें अपने पत्नी और बच्चों से ये कहना होता है कि हम नहीं कर सकते.
But if we are doing that all the time.
लेकिन यदि हम हमेशा इस काम ऐसा कर रहे हैं,
then we're wrong.
तो हम गलत हैं.
And when we do have to tell them, I can't take you like I promised.
जब हमें ये कहना होता है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता जैसे मैंने कहा था,
we need to make that up somehow.
तो हमें उसको करना है जैसे भी हो.
Brothers, there are interruptions.
हम भाइयों, हम जानते हैं कि हस्तक्षेप होते हैं.
And sisters, listen to me.
बहनों, ध्यान से सुने.
It is difficult to be married to a pastor.
पास्टरों के साथ विवाह करना कठिन है.
He does have to work very hard.
उसको बहुत कठिन परिश्रम करना होता है.
And you have to understand that's part of your calling.
आपको अपनी बुलाहट के उस भाग को समझना है.
But at the same time, men, do not neglect your duties.
लेकिन भाइयों इसी समय ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी कर्तव्यों को अनदेखा ना करें.
Take what I'm telling you very seriously.
जो कुछ आपसे बताया जा रहा है उसको गंभीरता से लें.
Very seriously.
गंभीरता से.
Now, we don't have time to do much more.
हमारे पास बहुत अधिक अध्ययन करने के लिए समय नहीं है.
But I just want you to see something that's important in Ephesians.
इफिसियों में जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर थोड़ी देर के लिए ध्यान को लगाएंगे.
Chapter 5,
पांच अध्याय,
verse 22,
22 पद.
Wives, be subject to your own husbands as to the Lord.
पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के अधीन हो.
For the husband is head of the wife, as Christ also is the head of the church.
क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है जिस प्रकार मसीह भी कलीसिया का सिर है.
Now this is important.
ये बहुत महत्वपूर्ण है.
Men should lead their families.
पुरुषों को अपने परिवार को छोड़ना है.
And women are commanded to follow their husbands.
और
Men must lead their families.
पुरुष जो है परिवार की अगुवाई करनी है उनको.
And women are called to respect and follow their husbands.
और महिलाएं इसलिए बुलाई गई हैं कि अपने पति का सम्मान करें और उनका अनुकरण करें.
But men,
लेकिन भाइयों,
we do not lead like Caesar.
लेकिन हमें कैसर के समान नहीं जीना है, अगुवाई करनी है.
We do not lead like the Gentiles.
हमें अन्य जातियों के समान अगुवाई नहीं करनी है.
We are to lead like Jesus Christ.
हमें यीशु मसीह के समान अगुवाई करनी है.
We use our authority to bless our families.
हमें अपने अधिकार का उपयोग करना है परिवार को आशीषित करने के लिए.
And to serve our families.
अपने परिवार की सेवा करने के लिए.
We go to bed tired.
हम बिस्तर पर जाते हैं थके हुए.
Because not only are we ministering to the church,
केवल इसलिए नहीं क्योंकि हम कलीसिया की सेवा कर रहे थे,
but we are ministering to our wives and our children.
लेकिन हम अपने परिवार, पत्नी और बच्चों की सेवा कर रहे थे.
Your wife is not a second class citizen in the kingdom of heaven.
परमेश्वर के राज्य में आपकी पत्नी दूसरे दर्जे का सदस्य नहीं है.
She is equal with you.
वह आपके समान है.
The Bible says that she will receive a white stone.
बाइबल कहती है उसको एक सफेद पत्थर मिलेगा.
And a name will be written on it.
और उस पर ना उसका नाम लिखा होगा.
That only she will know and Christ will know.
और वो केवल वो इस बात को जानेगी और मसीह इस बात को जानेगा.
You won't know what it is.
आप नहीं जानते कि वो क्या होगा.
You are not her priest.
आप उसके जो याजक नहीं हैं.
You are not her mediator between her and God.
आप परमेश्वर और उसके मध्य में मध्यस्थ नहीं हैं.
Christ is.
मसीह मध्यस्थ है.
You are equal.
आप समान हैं.
You both participate in the priesthood of the believer.
आप विश्वासियों की याजकीय सेवा में दोनों शामिल हैं.
But you do have different functions or roles.
लेकिन आपके जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो कर्तव्य हैं और आपकी जो भूमिका है वो अलग अलग है.
How do I lead?
मुझे कैसे अगुवाई करनी है?
According to the word of God.
परमेश्वर के वचन के अनुसार.
I have authority in the church only according to the word of God.
मुझे कलीसिया में जो अधिकार हैं केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार.
So when someone asks me, why are you leading the church this way?
किसी ने इनसे पूछा कि आप कलीसिया का संचालन इस प्रकार से क्यों करते हैं?
I have to be able to go to the scriptures and show them.
और मैं उसको वचन में जाकर उनको दिखा सकता हूँ.
I don't just do what I want to do.
केवल ये नहीं कर केवल करना नहीं केवल करते नहीं है लेकिन इस प्रकार से करना चाहते हैं.
How do I lead my wife?
किस प्रकार से अपने पत्नी की अगुवाई करते हैं?
According to the scriptures.
अपने वचन के अनुसार.
And it's not so much me commanding her.
यह इस प्रकार से नहीं है कि उसको आज्ञाएं देना.
No, not at all.
नहीं.
But me teaching her.
लेकिन उसको सिखाना.
Let's look at it two different ways.
आइए हम दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखें.
Let's say I'm the husband and you're my wife.
आइए इस बात को कहें कि मैं पति हूं और आप मेरी पत्नी हैं.
That is a scary thought.
ये बहुत डरावना विचार है.
Because some of you aren't very pretty over here. You can see.
जी. हाँ, क्योंकि आप में से कई लोग बहुत सुंदर दिखते हैं यहाँ पर.
But if I am doing this, I command you to do this, and I command you to do that.
लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि आपको तुम्हें ये करना, मैं आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ.
That's not what we're talking about.
लेकिन ये इस प्रकार की बात नहीं है.
This is what we're talking about.
जो बात यहाँ पर कर रहे हैं वो ये है.
There's God.
वहाँ परमेश्वर है.
He's doing the commanding.
वह मुझे आज्ञा दे रहा है.
And I look at you.
और मैं तुम्हें देखता हूँ.
And I say.
और मैं कहता हूँ.
Did you hear what he just said?
क्या तुमने सुना जो परमेश्वर ने कहा?
He commanded me and you to do this.
और परमेश्वर ने मुझे और तुम्हें ये करने के लिए कहा है.
You see the difference?
आप अंतर समझ रहे हैं?
It is sometimes very dangerous to teach on this subject.
कई बार इस विषय पर सिखाना बहुत खतरनाक है.
Because there are little tiny men who want to reign like kings.
क्योंकि कई बार बहुत ये छोटा मनुष्य राजा के समान शासन करना चाहता है.
They are cowards.
काय
वो
शासन करना चाहते हैं. अच्छा, वो लोग डरपोक हैं.
These men are cowards.
वो लोग डरपोक हैं.
They have no strength to exercise authority over men.
उनके पास अधिकार नहीं है पुरुषों के ऊपर शासन करने का.
And so they abuse their authority with their wife.
इसलिए वे अपनी अधिकार का उपयोग अपनी पत्नी के ऊपर करते हैं, थोपते हैं.
We all know cases like that.
हम इस प्रकार की घटनाओं को जानते हैं.
We lead as servants.
हमें सेवकों के समान अगुवाई करें.
Christ, knowing that he had all authority,
मसीह को मालूम था कि उनके पास सब अधिकार हैं.
He washed the disciples' feet.
उन्होंने चेलों के पैर धोए.
Now, let's say that we have to make a decision in my home.
आइए कहें कि हमें अपने मेरे परिवार में एक निर्णय करना है.
This is what I do not do.
ये है जो वो नहीं करते हैं.
I don't make the decision.
ये स्वयं निर्णय नहीं करते हैं.
And then go tell my wife, this is what we're going to do.
और तब जाके अपनी पत्नी से कहते हैं ये करने में जा रहा हूं.
And that's not the way I lead a church either.
इस तरह से कलीसिया का संचालन भी नहीं किया जाता है.
This is what I do.
ये है जो करते हैं आप.
I go to my wife.
आप अपनी पत्नी के पास जाते हैं.
Before I go to anyone else.
किसी और के पास जाने के बजाय.
I go to her for counsel.
उसके पास जाते हैं परामर्श के लिए.
I respect her.
उसका सम्मान करते हैं.
I respect her wisdom.
उसकी बुद्धि का सम्मान करते हैं.
Many times she sees things in a different way.
कई बार वह भिन्न तरीके से चीजों को देखती है.
I know her life.
आप उसके जीवन को जानते हैं.
I know she cares about me.
आप जानते हैं कि वो इनकी चिंता करती है.
And so this is what I do.
इसलिए वो ये करते हैं.
I go to her.
आप उसके पास जाते हैं.
And I say, we have to make a decision regarding this matter.
और आप कहते हैं कि मुझे इस संबंध में एक निर्णय करना है.
I think we ought to do this.
और आप कहते हैं कि हमें ये, मैं सोचता हूं कि हमें ये करना चाहिए.
What do you think?
तुम क्या सोचती हो?
If she agrees with me,
यदि वो सहमत होती हैं,
then I will seek other counsel.
तब दूसरों के परामर्श के लिए जाएंगे.
And we'll make the decision.
और तब निर्णय करेंगे.
If she does not agree with me,
यदि वो सहमत नहीं होती इनके साथ में,
I am not going to make the decision.
और आप निर्णय नहीं करेंगे.
It's like a red flag going up.
Yeah, समझ लीजिए लाल झंडा लग गया.
It's like a warning.
यह एक चेतावनी है.
She doesn't agree.
वो सहमत नहीं है.
I respect her.
आप उसका सम्मान करते हैं.
So what am I going to do?
अब क्या करेंगे वो?
Am I going to do what she says?
क्या वो कहते हैं जो वो करते हैं जो वो कहती हैं?
I'm not going to do that either.
वो भी नहीं करेंगे आप.
I'm going to pray some more.
अब और भी अधिक प्रार्थना करेंगे.
I'm going to talk to her some more.
और भी अधिक उनके साथ बात करेंगे.
I'm going to listen to her reasons.
और अब उसके कारणों को सुनेंगे.
I want us to make the decision in unity.
आप एकता के साथ निर्णय करना चाहते हैं.
Do you see that?
आप समझ रहे हैं इस बात को?
But now let's say that the decision has to be made.
लेकिन अब इस बात को कहें कि निर्णय किया जाना जरूरी है.
And we're not in agreement still.
और हम सहमत नहीं हैं.
But the decision has to be made.
लेकिन निर्णय किया जाना है.
Then who makes the decision?
तब कौन निर्णय करेगा?
I do.
तब स्वयं करेंगे.
It's my responsibility.
ये मेरी जिम्मेदारी है.
And if I'm wrong,
यदि आप गलत होते हैं,
she should still honor me.
तब भी वो इनका सम्मान करेंगी.
And if I'm right,
यदि आप सही होंगे,
I should not boast in front of her.
तब उनको उसके सामने घमंड नहीं करना है.
But it is my responsibility.
लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी है.
That's not a necessarily a joyful thing.
ये बहुत ही अधिक जरूरी नहीं कि ये आनंद की बात हो.
If I'm wrong,
यदि आप गलत हैं,
I'm responsible before God.
आप परमेश्वर के सामने जिम्मेदार हैं.
Brother, I will be judged.
भाइयों, मेरा न्याय किया जाएगा.
Do you understand?
आप समझ रहे हैं?
This is very, very important.
ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है.
We are one.
हम एक हैं.
Do you understand?
आप समझ रहे हैं?
We are one.
हम एक हैं.
I don't want there to be disunity between us.
हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मध्य में एकता ना रहे.
So I'm going to delay the decision.
इसलिए हम निर्णय को टाल सकते हैं.
I'm going to show respect to her.
अपनी पत्नी के प्रति सम्मान को दिखाने के लिए.
Until we have unity.
जब तक हमारे अंदर एकता ना हो.
Or until the decision has to be made.
जब तक निर्णय ना किया जाए.
Okay, now something else about my wife.
पत्नी के बारे में कुछ और बातें.
It says in verse 23,
23 पद में वो इस प्रकार कहता है,
that the husband is the head of the wife,
पति तो पत्नी का सिर है,
as Christ also is the head of the church,
जिस प्रकार मसीह भी कलीसिया का सिर है,
he himself being the savior of the body,
और स्वयं देह का उद्धार करता है.
Now Christ is the only savior.
मसीह एकमात्र उद्धार करता है.
Excuse me, brother, are we getting this on film? Okay. Christ is the only savior.
मसीह एकमात्र उद्धार करता है.
And I'm not a savior.
मैं उद्धार करता नहीं हूं.
But I have something of a saving ministry in the life of my wife.
लेकिन हम मेरी पत्नी के जीवन में मुझे कुछ उद्धार के काम को सेवा को करने की जरूरत है.
Not with regard to her justification.
उसका न्याय करने के लिए नहीं, उसको पवित्र, उसको धर्मी ठहराने के लिए नहीं.
But with regard to her sanctification.
लेकिन उनकी उसकी पवित्रता के लिए.
I should be an instrument of grace.
मुझे अनुग्रह का यंत्र बनना है.
One of the ways through which God transforms my wife.
एक तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर मेरी पत्नी के जीवन को परिवर्तित करते हैं.
I can tell what kind of husband you are.
मैं बता सकता हूं कि आप किस प्रकार के पति हैं.
I only have to look at your wife for a while.
केवल आपकी पत्नी को एक बार देखने के द्वारा.
If she is broken,
यदि वो बहुत टूटी हुई है.
If she is sad,
यदि वो बहुत दुखी है.
If she has no joy,
यदि उसके पास कोई आनंद नहीं है.
If her life is not prospering,
यदि उसका जीवन संपन्न नहीं हो रहा है.
That tells me a lot about you.
वह आपके बारे में बहुत कुछ बताता है.
You were given to her to make her flower.
आपको उसको, आप इसलिए उनको दिए गए हैं ताकि आप उसको एक फूल बना दें.
You were given to her to help her prosper and bear fruit.
आप इसलिए उसको दिए गए हैं कि उसको संपन्न बनाएं और वह फल ला सके.
Do you see that?
आप देख रहे हैं इस बात को.
She's not your servant.
वह आपकी सेवक नहीं है, सेविका नहीं है.
She's not just the person you married to bear children.
वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आपका विवाह हुआ है कि वह सिर्फ बच्चे उत्पन्न करे.
Christ is working to make the church beautiful.
मसीह कार्य कर रहे हैं कलीसिया को सुंदर बनाने के लिए.
And you need to work to make your wife beautiful.
आपको कार्य करना है अपनी पत्नी को सुंदर बनाने के लिए.
To bless her and prosper her.
उसको आशीषित करने के लिए और उसको संपन्न बनाने के लिए.
There's a funny story from Africa.
एक हंसने के लिए कहानी है अफ्रीका से.
And I don't know if it's true, but it's very helpful.
आपको नहीं मालूम कि ये सही है, लेकिन ये बहुत सहायक है.
It's called the eight cow wife.
ये ऐसे कहा जाता है, आठ गाय और पत्नी.
The wife that was worth eight cows.
अच्छा, एक पत्नी है जो आठ गायों पर कार्य करती है.
Now in Africa, when a young man wants to marry a woman,
अफ्रीका में एक जवान व्यक्ति एक महिला से विवाह करना चाहता है.
He has to give something to the father.
और उसको अपने पति उसके पति पिता को कुछ देना है.
And the most that you can give is 8 cows.
और सबसे ज्यादा जो आप दे सकते हैं वो है 8 गायें.
If you give 8 cows, this woman is really something.
यदि आप 8 गायें देते हैं तो यह महिला बहुत प्रसन्न हो जाएगी.
Now this one father had a daughter.
और एक पिता के पास एक पुत्री है.
And she was not very pretty. She was not very pretty.
वो बहुत सुंदर नहीं है.
And maybe he thought, I'm not even going to get a chicken for her. She wasn't very pretty.
वो बहुत सुंदर नहीं थी.
One day this young man shows up.
एक दिन ये जवान उसको देखता है.
And he said, I want to marry your daughter.
और वो कहता है उसके पिता से कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ.
The father was very excited.
और पिता बहुत प्रसन्न हो गया.
He didn't think anybody would marry his daughter.
उसने सोचा था कि उसकी बेटी से कोई विवाह नहीं करेगा.
The father was even ashamed to ask the young boy, "What are you going to give?"
और पिता यहाँ तक शर्मिंदा था उस लड़के से पूछने के लिए, तुम मुझे क्या दोगे?
But the boy said, "I'm ready to pay."
लड़के ने कहा कि मैं चुकाऊंगा, कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं.
And the father said, "Well, what will you give?"
पिता ने कहा कि तुम मुझे क्या दोगे?
And the young man said, 8 cows.
उसने कहा कि 8 गायें दूंगा मैं तुम्हें.
And the father almost fainted.
और अब पिता लगभग मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया.
He couldn't believe it.
वो विश्वास नहीं कर सकता था इस बात पे.
Why are you giving 8 cows?
उसने कहा कि तुम मुझे 8 गायें क्यों दोगे?
And this is what the young man said.
जवान ने ये कहा.
Because I always wanted to have a wife that was worth 8 cows.
और क्योंकि मैं हमेशा इस बात को चाहता था कि मेरे पास ऐसी पत्नी हो जिसका मूल्य 8 गायों के बराबर हो. 8 गायों से अधिक?
He said, "Why are you giving 8 cows for my daughter?"
उसने पूछा कि तुम मेरी बेटी के लिए 8 गायें क्यों दे रहे हो?
He said, "Because I always wanted to have a wife that was worth 8 cows."
उसने कहा कि मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं ऐसी लड़की से विवाह करूं जिसका मूल्य 8 गायों के बराबर हो.
Guess what?
सोचे क्यों?
As the years passed,
वर्षों जब बीत गए,
she became an 8 cow wife.
वो 8 गायों वाली पत्नी बन गई.
She became the most respected woman in the village.
गांव में सबसे सम्मानित महिला बन गई.
Men, do you see the lesson here?
आप भाइयों इस पाठ को समझ रहे हैं यहाँ पर?
What has your wife become?
आपकी पत्नी क्या बनी है?
Because of you.
आपके कारण.
How much better has she become because of you?
कितना बेहतर बन गई है वो आपके कारण.
How much more joyful has she become because of you?
कितना अधिक आनंदित बनी है वो आपके कारण.
Marriage is a lot different than you thought, isn't it?
विवाह बहुत अधिक भिन्न है जितना आपने सोचा है उससे.
Now don't think that I'm teaching you psychology.
आप ये ना सोचें कि आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं.
This is the Bible.
ये बाइबल सिखा रहे हैं आपको.
And you will be held accountable on the day of judgment.
न्याय के दिन आपको इस बात का लेखा देना होगा.
For the way you treat your wife.
जैसे आप अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं.
Now I want us to see something else here.
आपको कुछ और दिखाएंगे.
Verse 25.
25 पद.
Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her.
हे पतियों अपनी 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 पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया.
How did Christ love the church?
मसीह ने कलीसिया से कैसा प्रेम किया?
He died for her.
मसीह कलीसिया के लिए मर गया.
There is a sense that your marriage is the day of your death.
यहाँ पर एक बात समझने के लिए है कि आपका जो विवाह का दिन था वो आपकी मृत्यु का दिन था.
Now think about it.
सोचे इसके बारे में.
How did Christ love the church?
मसीह ने कलीसिया से कैसे प्रेम किया?
He died for her.
वह उसने अपनी जान दे दी, मर गए.
The day you marry,
जिस दिन आपने विवाह किया,
is the day you die.
या वह दिन था जब आप मर गए.
But what did Jesus say?
यीशु क्या कहते हैं इसके विषय में?
The one who loses his life,
जो अपने जीवन को खोता है,
will find it.
वह उसे प्राप्त करेगा.
What does it mean to die?
उसका मतलब क्या है? मरने का मतलब क्या है?
It's to die to all our selfishness.
हमारे सारे स्वार्थपूर्ण आचरण के लिए मरना.
All our self-centeredness.
सारे आत्मकेंद्रित जीवन के लिए मरना.
And give our life away to someone else.
अपने जीवन को किसी और के लिए देना.
A young man came to me one time.
एक बार एक जवान व्यक्ति इनके पास आया.
And he said, "I want to be a missionary to China."
मैं चीन में एक मिशनरी बनना चाहता हूँ, उसने कहा आपसे.
I said, "Why?"
क्यों?
He said, "I love the Chinese."
उसने कहा मैं चाइनीज लोगों को प्रेम करता हूँ.
He just always talked about the Chinese.
उसने सिर्फ चाइनीज लोगों के बारे में बात की.
He said, "I love the Chinese."
उसने कहा मैं चाइनीज लोगों के बारे में प्रेम करता हूँ.
He said it all the time.
उसने बार बार ये कहा.
So one day I looked at him.
एक दिन इन्होंने उसको देखा.
And I said, "Do you know why you love the Chinese?"
उसने कहा आपने पूछा कि तुम जानते हो कि क्यों तुम चाइनीज को प्यार करते हो?
He said, "No."
उसने कहा नहीं.
I said, "You love the Chinese because you don't know any Chinese."
उसने कहा आपने कहा कि चाइनीज लोगों को तुम इसलिए प्यार करते हो क्योंकि तुम किसी चाइनीज को नहीं जानते हो.
Now what did I mean by that?
आपका अर्थ क्या था इससे?
I have Chinese friends.
आपके पास चाइनीज मित्र थे.
But this is my point.
ये उनका बिंदु ये था.
He was talking about how much he loved the Chinese.
वो हमेशा ये बात करता था कि वो कितना अधिक चाइनीज लोगों से प्रेम करता है.
The Chinese are 10,000 miles away.
और चाइनीज लोग वहां से 10,000 मील दूर हैं.
It's easy to love somebody 10,000 miles away.
ये अच्छा है कि जो व्यक्ति बहुत दूर है आप उससे प्रेम करें.
What's difficult is to love the person who's closest to you.
और जो आपसे नजदीक है व्यक्ति, सबसे नजदीक व्यक्ति है, उससे प्रेम करना कितना कठिन है.
That's the point I was making.
ये बात आप कहना चाह रहे थे इस विचार.
It's easy to be nice to everybody.
सबके प्रति अच्छा होना बहुत सरल बात है.
If they're not in a close relationship with you.
यदि उनके साथ नजदीकी संबंध नहीं है आपका.
But when they enter into a relationship with you, it gets difficult.
जब आप उनके साथ संबंधों में प्रवेश करते हैं, तो यह कठिन हो जाता है आपके लिए.
Now, why, for what purpose is the husband to die?
किस उद्देश्य से पतियों को मरना है?
This is very important for the women here.
ये महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
You might be thinking right now.
हो सकता है आप इस समय सोच रहे हों.
Man, I like this stuff. I like this teaching.
मुझे ये शिक्षा बहुत पसंद है.
Teach it some more.
कुछ और सिखाइए.
I'm going to get the DVD and play it for my husband 24 hours a day.
और मैं ये DVD जो शिक्षा की है मैं अपने पत्नी को दूंगी और वो हमेशा इसको 24 घंटे देखते रहें.
He's supposed to die for me.
उसको मेरे लिए मरना चाहिए.
He's supposed to serve me.
उसको मेरी सेवा करनी चाहिए.
He's supposed to give me everything I want.
उस जो कुछ मैं चाहती हूँ वह मुझे सब कुछ देना चाहिए उसे.
No, he's not.
नहीं.
Why does he die for you?
वो आपके लिए क्यों मरे?
Why did Christ die for you?
मसीह क्यों कलीसिया के लिए मरे?
Did he die for you to give you everything your flesh wants?
क्या मसीह इसलिए मरे कि जो कुछ आपके शारीरिक जरूरतें थी वह सब दे, शारीरिक चाहते थी उन्हें पूरा करने के लिए?
No.
नहीं.
Look what it says.
आइए देखें वचन क्या कहता है.
Verse 26, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.
कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए.
Our service to our wife,
हमारी पत्नी के प्रति हमारी सेवा,
is for their sanctification,
उसको पवित्र बनाने का कार्य है.
To make them more holy,
उसको और अधिक पवित्र बनाने के लिए.
Sometimes that means we will bless them with something they truly desire.
कई बार
We will bless them with something they desire.
कई बार जिस बात की वो अभिलाषा करती है उसके द्वारा हम उसको आशीषित करते हैं.
But sometimes it will mean telling them no.
कई बार इसका अर्थ ये भी है कि उनको ना कहना.
This is not right.
ये सही नहीं है.
But on what authority do we do that?
किस अधिकार से हम ये करते हैं?
the word of God.
परमेश्वर के वचन के अधिकार से.
If I realize that my wife is a woman.
यदि मैं महसूस करता हूं कि मेरी पत्नी एक महिला है.
She wants to spend time with her husband.
वह अपने पति के साथ समय को व्यतीत करना चाहती है.
I need to do that.
मुझे वो करने की जरूरत है.
But I can't spend all my time with her.
लेकिन मैं अपने पूरे समय को उसके साथ नहीं व्यतीत कर सकता.
She may be walking down the street and see a pretty dress that she likes.
हो सकता वो गली में चल रही है और उसको जो वस्त्र पसंद है वो पहना हुआ है उसने.
And if the Lord provides, maybe I'll get something like that for her.
और हो सकता प्रभु उपाय करे और मैं उसके लिए कुछ ला सकता हूँ.
Even if I have to take money from something I wanted.
हो सकता मुझे किसी ऐसे चीज से पैसा निकालना पड़े जो मुझे चाहिए था.
But it doesn't mean I'm going to buy her a dress every time she wants one.
लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार मैं उसको जो कपड़ा चाहिए वो खरीद के दूँ.
It's all about the scriptures.
ये सब कुछ वचन के आधार पर है.
Now, men, listen to me.
भाइयों, आप ध्यान से सुने.
You're probably like me.
आप में से कई लोग लगभग मेरे समान हैं.
I really don't care about anything.
मैं किसी बात की चिंता नहीं करता.
I don't care about what my clothes look like.
मैं इस बात की चिंता नहीं करता मेरे कपड़े कैसे दिखते हैं.
I don't care if there's curtains on the windows.
मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि खिड़कियों में पर्दे लगे हों.
I don't care about any of that kind of stuff.
इस प्रकार की किसी बात की चिंता नहीं करता मैं.
But women are not like us.
लेकिन महिलाएं हमारे समान नहीं होती हैं.
God made them different.
परमेश्वर ने उनको भिन्न बनाया है.
Do you see that?
आप इस बात को देख रहे हैं.
Don't treat your wife as though she was you.
पत्नियों को अपने समान व्यवहार ना करें.
Don't treat her as though she thinks like you think.
उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि आप सोचते या सोचते हुए कि वो आपके समान सोचती हैं.
Or she has the same needs you have.
या उसकी जरूरतें आपके समान हैं.
She doesn't.
नहीं, उसकी जरूरतें आपके समान नहीं हैं.
She's different.
वो भिन्न है.
Let me give you an example.
आपको एक उदाहरण देंगे.
I do not need my wife to call me at the office 3 times a day.
आपको जरूरत नहीं है कि वो इनको उनके कार्यालय में 3 बार फोन करे.
And tell me I love you.
और ये कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ.
I don't need her to give me a flower.
इनको नहीं चाहिए कि वो इनको फूल दे लाकर.
And I don't need her to walk down the street with me holding my hand.
और इनको जरूरत नहीं है कि वो गली में इनका हाथ पकड़ कर चले.
My wife does need to hear me say I love you.
लेकिन मेरी उनकी पत्नी को ये चाहिए कि वो कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ.
And if you say, well, I'm just not like that.
यदि
if you say,
यदि आप कहें कि मैं ऐसा नहीं हूँ.
If you say, well, Brother Paul, I'm just not that kind of a man.
यदि आप कहें कि भाई पॉल मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ.
I don't like to say those kind of things.
मुझे ये सब कहना पसंद नहीं है.
Then you need to repent of your sin.
तब आपको अपने पाप से पश्चाताप करने की जरूरत है.
And get right with God and do it anyway.
और परमेश्वर के साथ सही होने की जरूरत है.
Because it's what she needs.
यही है जो उसको चाहिए.
She needs you to hold her hand.
उसको चाहिए कि आप उसका हाथ पकड़ कर चलें.
To just sit there with her and talk.
और उसके साथ बैठे और उससे बात करें.
And every once in a while bring her a flower.
और सब जानते हैं कि उसके लिए फूल क्यों लाना है.
If you steal a flower out of your neighbor's garden.
यदि आप अपने पड़ोसी की क्यारी में से फूल को चुराएंगे.
But you do it for your wife.
और आप अपनी पत्नी के लिए लाएंगे.
It's not a sin.
ये पाप नहीं है.
That's what my wife told me.
ये बात इनकी पत्नी ने बताई इनको.
Let me ask you a question.
आपसे एक प्रश्न पूछेंगे.
Have you ever sat down with your wife?
क्या आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं?
And said this.
और आपने ये कहा.
Tell me what you want.
मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए.
From me.
मुझसे.
Tell me what you need for me.
मुझसे तुम्हें क्या चाहिए बताओ.
I'm going to write it down.
मैं इसको लिखूंगा.
I want to know.
मैं जानना चाहता हूँ.
Have you ever done that?
आपने कभी ये किया है?
kind of a smart thing to do, don't you think?
क्या सोचते हैं कितना समझदारी वाली काम है ये करने के लिए.
And some of the things that you write down.
आप में उनमें से कुछ चीजों को लिख लें.
You might go to scripture and find out that's not biblical.
और आप हो सकता वचन में जाएं और पाएं कि ये बाइबल आधारित नहीं है.
And you'll have to teach her that's not biblical.
और तब आप अपनी पत्नी को सिखाएं कि ये बाइबल के अनुसार नहीं है.
But probably most of the things that she wants from you will be biblical.
और लेकिन बहुत सारी चीजें जो वो आपसे चाहती हैं वो बाइबल आधारित हो सकती हैं.
The Bible says here that we are to nourish our wives.
बाइबल यहां पर कहती है कि हमें अपनी पत्नी का पालन पोषण करना है.
And we're to cherish our wives.
और हमें उसको खुशी प्रदान करनी है.
How do we nourish our wives?
हम किस प्रकार से अपनी पत्नी का पालन पोषण करते हैं?
Through the word of God.
परमेश्वर के वचन के द्वारा.
Through prayer.
प्रार्थना के द्वारा.
Through our own fruitful life.
हमारे फलवंत जीवन के द्वारा.
Being an example of Christ.
मसीह का उदाहरण बनने के द्वारा.
Now, how do we have a Bible study with our wives?
अपनी पत्नी के साथ बाइबल अध्ययन को कैसे करें?
It's not that you put a pulpit in your house.
वो ऐसे नहीं है कि अपने घर में आप एक पुलपिट रख लें.
And sit her in front of the pulpit.
और उसको नीचे बैठाएं यहाँ पर.
And preach to her.
और प्रचार करें उसको.
You sit down.
आप बैठ जाएं.
Say 15 minutes.
15 मिनट.
And maybe read through a book of the Bible together.
हो सकता है बाइबल की कोई पुस्तक साथ मिलकर पढ़ें.
Read a few verses.
कुछ वचन को कुछ पदों को पढ़ें.
And then talk about them.
और तब उसके बारे में बात करें.
Let her talk about them.
उसको उसके बारे में बात करने दें.
Discuss how they apply to your life.
चर्चा करें कि वो आपके जीवन के लिए कैसे लागू होते हैं.
Just enjoy a time in the word with her.
सिर्फ वचन के साथ थोड़ा समय आनंद करें उनके साथ में.
Pray with her.
उनके साथ प्रार्थना करें.
About your marriage.
अपने विवाह के बारे में.
About your needs.
अपनी जरूरतों के बारे में.
About your children.
अपने बच्चों के बारे में.
It also says that we are to cherish our wives.
ये भी कहता है कि हमें उसको पोषण करना है.
The idea there is tenderness and warmth. Tenderness, being very soft with them.
हाँ, यहाँ पर जो विचार है वो ये है कोमल कोमल बने.
You do not treat a female like you do a male.
आप जैसा पुरुषों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा महिलाओं के साथ व्यवहार नहीं करते हैं.
With your other friends, you know, you can punch them and all kinds of things.
दूसरे मित्रों के साथ आप इस प्रकार से कर सकते हैं.
But you don't treat your wife roughly.
लेकिन महिलाओं के साथ आप गुस्से से व्यवहार नहीं करते हैं.
She's your wife.
वो आपकी पत्नी है.
Men,
भाइयों,
do you ever just hold your wife to hold her and that's all?
क्या आप सिर्फ कभी अपनी पत्नी को सिर्फ पकड़ के रखते हैं कि पकड़े रहें?
Do you ever just touch her face just to touch her face?
क्या आप सिर्फ कभी अपनी पत्नी के मुंह को छूते हैं चेहरे को छूते हैं सिर्फ छूने के लिए?
Or is it that the only time you touch her is to lead to something else?
या सिर्फ आप उसी समय उसको छूते हैं किसी और बात के लिए अगुवाई करने के लिए?
If that's what you do, then you make her feel cheap.
यदि आप ये ऐसा करते हैं तो आप उसको साथ धोखा करते हैं.
I hope you understand what I'm saying.
आप समझ रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं.
She should be dear to us.
वह हमको प्रिय होना है.
We should be very careful with her.
हमें उसके साथ बहुत सावधानी से रहना है.
Now, wives.
क्यों? पत्नियों.
I'm going to talk about the wives here.
आप पत्नियों से बात करेंगे आप.
Okay. 1 Timothy chapter 3.
पहला तिमोथी उसका तीन अध्याय.
Let's just go there really quick.
आइए जल्दी से चलें वहां पर.
Read verse 1.
एक पद.
It says, in the same way you wives.
Oh, sorry. पहला पत्रस तीन अध्याय.
1 Peter chapter 3.
माफ कीजिएगा. I'm sorry. पहला पत्रस तीन अध्याय.
Chapter verse 1.
एक पद.
Chapter 3, verse 1.
एक पद.
In the same way, you wives,
इसी प्रकार हे पत्नियों,
be submissive to your own husbands,
अपने अपने पति के अधीन रहो,
so that even if any of them are disobedient to the word,
जिससे यदि उनमें से कुछ वचन का पालन ना करते हों,
they may be won without a word by the behavior of their wives,
तो वह पवित्र और सम्माननीय चाल चलन को ध्यानपूर्वक देखकर वचन बिना ही अपनी पत्नी के व्यवहार से जीते जाएं।
As they observe your chaste and respectful behavior,
जैसा वो तुम्हारे सम्मानित और पवित्र चाल चलन को देखते हैं।
So if your husband is disobedient,
यदि आपका पति आज्ञाकारी नहीं है,
he says you do not change your husband with your tongue,
वो ये नहीं कहता है कि अपने पतियों को अपने जीव के द्वारा सुधारो, बदलो,
by arguing with him,
उसके साथ वाद विवाद करने के द्वारा,
you change your husband by your godly behavior,
अपने पति को बदलो अपने भक्तिपूर्ण व्यवहार के द्वारा।
If I come home from the office,
यदि मैं कार्यालय से घर में आया हूँ,
and I'm in a terrible mood,
और मैं बहुत अलग स्थिति में हूँ,
and I get to my house,
और मैं अपने घर में आता हूँ,
and there's no dinner,
और वहाँ पर रात का खाना नहीं बना है,
and the house is messy, the house is not fixed,
घर ठीक-ठाक नहीं है,
and I look at my wife,
और मैं अपनी पत्नी की ओर देखता हूँ,
what happened?
क्या हो गया?
And I'm rude,
और मैं कठोर हूँ,
and she turns around and looks at me,
और वो मुड़कर मुझे देखती हैं,
and she gets mad,
और वो पागल जैसी स्थिति में हो जाती हैं,
then I'm justified in my rudeness.
तो मैं सही ठहरता हूं मेरी कठोरता में,
and a fight begins,
और झगड़ा आरंभ होता है.
But if I come home in a bad mood,
यदि मैं गलत स्थिति में भी घर में आता हूं,
and the house is all messed up,
और घर ठीक ठाक नहीं है,
and there's no food on the table,
रात का खाना नहीं है मेज पर,
and I say, what's going on here?
क्या हो रहा है यहाँ पर?
And my wife turns around,
और वो मेरी मुड़ती हैं,
and responds in a very, very godly way,
और वो बहुत सही तरीके से, भक्तिपूर्ण तरीके से प्रत्युत्तर करती हैं,
I am ashamed.
तो मुझे अपने क्रोध पर गुस्सा आएगा, शर्म लज्जा आएगी,
I am ashamed.
मैं लज्जित होऊंगा.
Do you see that?
देख रहे हैं आप?
By her godliness,
उसके भक्तिपूर्ण व्यवहार के द्वारा,
she humbled me,
वह उसने मुझे नम्र कर दिया,
by her gentle words,
उसके कोमल सब वचनों के द्वारा,
she cut my heart,
उसने मेरे हृदय को चीर दिया,
and showed me my sin,
उसने मुझे मेरा पाप दिखाया.
That's the way a godly woman responds,
वही तरीका है जिससे भक्तिपूर्ण महिलाएं प्रत्युत्तर करती हैं.
We're not going to turn there,
हम वहां नहीं जाएंगे.
But in Romans 12,
रोमियो 12 अध्याय,
it says we should not take vengeance on someone,
हम किसी से बदला ना लें,
but we should give place to the wrath of God,
परंतु परमेश्वर के क्रोध को स्थान दें,
we should give room for the wrath of God to work,
परमेश्वर के क्रोध को कार्य करने का स्थान दें.
Now ladies, let me give you an example,
बहनों आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं.
Let's say that you know your husband is just being wrong.
आप जानती हैं कि आपका पति गलत है.
And so you fight against him with your tongue.
इसलिए आप उस जीव के साथ जीव से झगड़ा करती हैं उससे.
You're just arguing.
आप सिर्फ तर्क वितर्क करती हैं.
Let me tell you what you're like.
मुझे बताने दें कि आप किसके समान हैं.
In many castles in Europe.
अच्छा, बहुत सारे किले हैं यूरोप में.
The front door on the castle is huge.
और जो उसका सामने का दरवाजा होता है बहुत बड़ा होता है किले का.
And 20 people can enter in at one time.
20 लोग एक साथ प्रवेश कर सकते हैं उसमें.
But you know what's amazing?
लेकिन आप जानते हैं अद्भुत बात क्या है?
The stairs to the second floor,
दूसरी मंजिल तक जो सीढ़ियां हैं,
are usually about this wide.
इतनी चौड़ी होती हैं.
And the door at the top is only about this big.
जो ऊपरी दरवाजा होता है वो छोटा होता है.
I asked someone, why is that?
इन्होंने किसी से पूछा कि ऐसा क्यों है?
And he said, well, if an enemy army breaks down the front door,
यदि शत्रु की सेना सामने वाले दरवाजे को तोड़ दे,
the people in the castle can go up to the second floor.
महल के लोग, किले के लोग दूसरे मंजिल पर जा सकते हैं.
And even though the army has 1,000 soldiers,
हो सकता है उस सेना के पास में 1,000 सैनिक हों,
the stairs are so narrow.
वो इतने सकरे रास्ते सीढ़ियां हैं.
Only one soldier at a time can go up them.
केवल एक सैनिक ऊपर जा सकता है.
And so one man standing at the door can defend the entire castle.
इसलिए केवल एक व्यक्ति पूरे किले की सुरक्षा कर सकता है.
It's a good idea.
कितना अच्छा विचार है.
That's a good illustration of you and your husband.
ये बहुत अच्छा उदाहरण है आप और आपके पति के लिए.
You're mad at your husband.
आपने पति के साथ विवाह किया.
So you fight against him with the sword of your tongue.
ताकि आप उसके साथ में जीव से झगड़ा न करें.
You're mad at your husband.
आपने पति से विवाह किया.
And so you fight against him with the sword of your tongue.
जिससे आप जीव के साथ अपने पति से झगड़ा ना करें.
And he runs up to the second floor.
और वह दूसरी मंजिल पर भाग जाता है.
And he pulls out his long lance. His long stick with a knife.
और वो लंबी सी छड़ी लेता है.
And he fights you.
और वो वहां से झगड़ा करता है आपसे.
And you're fighting him.
और आप उससे झगड़ा कर रही हैं.
And while you are fighting him, you're praying.
जब आप उससे झगड़ा कर रही हैं, आप प्रार्थना कर रही हैं.
Lord, change my husband.
प्रभु मेरे पति का बदल दे.
And the Lord says, get out of the way.
तब प्रभु कहेगा कि रास्ते से हट जाओ.
Only one can go up the steps at a time.
एक ही जन सीढ़ी पर जा सकता है एक बार में.
But you keep fighting.
लेकिन आप झगड़ा करती रहती हैं.
Lord, why don't you come up here and help me?
आप कहती हैं, प्रभु आप आकर मेरी सहायता क्यों नहीं करते हैं?
And the Lord says, get out of the way.
तब प्रभु कहता है रास्ते से हट जाओ.
Stop fighting with your husband.
अपने पति के साथ झगड़ा करना बंद करो.
Just get out of the way.
रास्ते से हट जाओ.
Because only one can be up there at a time.
क्योंकि ऊपर केवल एक ही जन जा सकता है एक बार में.
Do you see?
देख रहे हैं आप?
You fight with your husband?
आप अपने पति के साथ झगड़ा करती हैं?
God will do nothing.
परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे.
You respond like a godly woman?
आप एक भक्तिपूर्ण महिला के समान व्यवहार करें.
And then God will fight with your husband.
तब परमेश्वर आपके पति के साथ झगड़ा करेगा.
Husbands?
पतियों?
If you act poorly with your wives?
यदि आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया अपनी पत्नी के साथ में.
If you act badly with your wives,
यदि आपने बुरा व्यवहार किया अपनी पत्नी के साथ में.
And they act very godly to you,
और उन्होंने बड़ा भक्तिपूर्ण व्यवहार किया आपके साथ में.
You know what your wife is thinking?
आप जानते हैं आपकी पत्नी क्या सोचेगी?
God's gonna get him.
परमेश्वर आपका न्याय करेगा.
God is going to work.
परमेश्वर कार्य करेगा.
He's going to deal with you.
परमेश्वर आपके साथ व्यवहार करेगा.
You need to be afraid.
आपको डरने की जरूरत है.
Now, ladies,
बहने,
you shouldn't be nice to your husbands.
आपको अपने पति के साथ अच्छा बनना है.
Only so that God will beat them up.
इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनको पिटाई करे.
You should be kind to your husbands because it's the right thing to do.
आपको अपने पति के प्रति दयालु बनना है ताकि सही कर सके.
And because you're servants of the Lord.
क्योंकि आप वचन के सेवक हैं.
Brothers, I know I've preached a long time, but let me go 10 more minutes.
भाइयों, मैं जानता हूं कि मैंने लगभग लंबे समय प्रचार किया है, लेकिन 10 और मिनट.
Your children.
आपके बच्चे.
I could spend an entire week teaching on this.
पूरा सप्ताह इस पर व्यतीत कर सकते हैं शिक्षा देते हुए.
You will teach the Bible to lost people.
आप खोए हुए लोगों को शिक्षा देंगे बाइबल की.
You'll teach the Bible to church people.
आप कलीसिया के लोगों को शिक्षा देंगे बाइबल की.
But will you not teach your own children?
लेकिन आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे.
God says, train up a child in the way that he should go.
परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए.
And when he is old, he will not depart from it.
जब वह बड़ा हो जाएगा तो उससे नहीं फिरेगा. जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब तक उससे नहीं फिरेगा.
That does not mean take them to Sunday school.
उसका मतलब यह नहीं है कि संडे स्कूल में ले जाकर छोड़ देना.
It means that you are the primary teacher of your children.
उसका अर्थ यह है आप अपने बच्चे के मुख्य शिक्षक हैं.
Do you understand this responsibility?
आप इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं?
Take a look at Deuteronomy 6.
व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय पर ध्यान दें.
Not right now, but when you go home.
अभी नहीं, अपने घरों में जाकर.
You are to teach the word of God to your children.
आपको अपने बच्चों को वचन की शिक्षा देनी है.
When they lie down and when they rise up.
जब वो सोते हैं, जब वो उठते हैं.
When they go out of the house and when they come into the house.
जब वो घर से बाहर जा रहे हैं, जब घर के अंदर आ रहे हैं.
The word of God should saturate your home.
परमेश्वर के वचन से आपका घर भर जाए.
But not only should you teach your children.
केवल अपने बच्चों को शिक्षा ना दें.
You should train them.
आपको आप उनको प्रशिक्षित करें.
And discipline them.
उनको अनुशासित भी करें.
And you should do all of it with love.
ये सब कार्य प्रेम के साथ करना है.
And consistency. Being always the same.
एक समान लगातार नियमित रूप से.
Now, men, let me finish by saying this.
अब यह कहकर समाप्त करेंगे.
We are pastors and missionaries.
हम लोग पासवान और सेवक हैं.
Our lives are difficult.
हमारे जीवन कठिन हैं.
And full of burdens.
बहुत सारे बोझ से भरे हुए.
Sometimes when I'm dealing with the problems at the mission, it almost overwhelms me.
जब आप सेवा के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करते हैं, तो यह बहुत अधिक हो जाता है.
I cannot carry those burdens to my home.
आप उन बोझ को जो सेवा क्षेत्र के हैं अपने घरों में नहीं ले जा सकते.
My wife and my children cannot bear those burdens.
इनकी हमारी पत्नियां और बच्चे उन बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते.
As the husband and the father,
एक पिता और पति होने के नाते,
the entire atmosphere of my home,
हमारे घर का संपूर्ण माहौल,
depends on me.
हमारे ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर करता है.
Let's say I have many, many problems.
आइए कहें कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं.
And I get in the car.
और मैं कार में बैठा.
And I drive home.
और मैं घर में आया.
Sometimes I will sit there in the car for 10 or 15 minutes.
कई बार वो 10 से 15 मिनट तक कार में बैठे रहेंगे.
Preparing my heart.
अपने हृदय को तैयार करेंगे.
Laying down the burdens.
बोझ जो है उनको छोड़ेंगे.
Because when I walk in that house,
क्योंकि जब आप घर में जाएंगे,
my wife and my children need to see,
मेरी पत्नी और बच्चों को बच्चे देखना चाहते हैं.
They need to see me joyful,
इनको आनंदित,
confident,
साहसी,
strong,
मजबूत.
When dad comes home,
जब पिता घर आता है,
it should be like light coming into the house.
वह इस प्रकार से होना है जैसे लाइट आती है घर में.
It should be the happiest moment in the day for the children.
यह बच्चों के लिए दिन का सबसे अधिक प्रसन्न वाला समय होता है, खुशी का समय होता है.
Your children will be attracted to your joy.
आपके बच्चे आपके आनंद की ओर आकर्षित होंगे.
And then you can tell them that that joy comes from Christ.
और तब आप उनको बता सकते हैं कि जो आनंद है वह मसीह की ओर से आता है.
If Christ has not given us joy, what has he given us?
यदि मसीह ने हमको आनंद नहीं दिया होता तो हमें क्या देता?
Sometimes when I come home,
कई बार जब मैं घर में आता हूं,
my wife will be cooking,
इनकी पत्नी खाना बना रही होती है उस समय,
and I'll grab her,
और मैं उसको पकड़ लेता हूं,
and dance into the living room.
और कमरे में रहने के कमरे तक डांस करते हुए जाते हैं.
And the children are running around singing.
और बच्चे साथ साथ में गाना गाते हैं.
It needs, listen to me, it needs to be like that.
इस प्रकार से होने की जरूरत है कई बार.
There needs to be joy.
घर में आनंद होने की जरूरत है.
There needs to be light and life.
घर में जीवन और ज्योति होने की जरूरत है.
Yes, sometimes there will be problems.
कई बार कुछ समस्याएं होंगी.
We don't dance every day.
हर दिन नाच नहीं सकते इस प्रकार से.
But you know what I mean.
लेकिन आप जानते हैं उसका मतलब क्या है.
Our homes ought to be a place of love.
हमारा घर जो है वो प्रेम का स्थान बनना है.
Of security.
सुरक्षा का स्थान.
And joy.
और आनंद का स्थान.
And all of it must come from Christ.
और इनमें से सब मसीह की ओर से आना है.
Let's pray.
आइए प्रार्थना करें.